वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सब लोग पुकारेंगे बड़े प्रेम से, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भागवतम की तो आज के श्रावण महीने के वद्य अष्टमी को 5 सितंबर 2015 को श्री गोवर्धन कृषि क्षेत्र में श्री जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, तो इस पावन शुभ अवसर पर हम श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से पढ़ेंगे, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। माताजी इज एनीबडी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी मे मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है। माम मुझको एति प्राप्त करता है। सह वह अर्जुन हे अर्जुन हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम के अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव को सत्य को समझ लेता है वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट और अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वो आंशिक होती है, पूर्ण नहीं होती और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय भी बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति और उनके कार्यकलापों के बारे में समझने मात्र से ही भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है और इसे उसे इस संसार में लौट आने का भय भी नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 33वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है तो यहां पर हम लोग तात्पर्य रोक देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है पूरी सृष्टि के लिए, पूरे निर्माण के लिए, भगवान के जितने भी लोग इसमें फंसे हुए हैं उन सब के लिए बहुत ही पावन पवित्र बेला है। भगवान बिना जरूरत के इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं क्योंकि उनका धाम इतना सुंदर है। उनके धाम में श्रिया कांता कांता आगे क्या कल्पतरवो धर्मा भूमि चिंतामणि, हाँ बहुत सुंदर वर्णन ब्रह्मानी जी भी किया है। कल्प वृक्षों से भरा हुआ है, नदियां सरोवर झरने पर्वत फल फूल बेली रंग बिरंगी वातावरण, जन्म मृत्यु का अभाव, बुढ़ापे का रोग का अभाव, सुंदर शरीर, सुगंधमय शरीर, छह ऋतु अपने अपने बेस्ट स्थिति में प्रस्तुत होते हैं अपने आप को भगवान की इच्छा से। समय का प्रभाव नहीं, प्रेम ही प्रेम सब जगह भरा हुआ है। सब भक्त लोग परम प्रेमी हैं भगवान के, निस्वार्थ, केवल भगवान ही उनके चेतना का केंद्र स्थान है। ऐसे प्रेमी जन वहां रहते हैं, कोई लोभ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, अपनी अपनी सेवा में सब लोग संतुष्ट हैं और अपनी दिव्य सेवा को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। भगवान की उनके आनंद को निरंतर द्विगुणित त्रिगुणित अनंत गुणित करते रहते हैं। ऐसे सुंदर लोग को छोड़कर कौन आएगा इस बदबू वाले दुनिया में? सबके शरीर से बदबू आती है, 10 मिनट कीर्तन किया नाचे तो बदबुओं का माहौल बन जाता है ना। मलमूत्र है शरीर में, जहाँ जा रहे हैं सब मलमूत्र को लेके जा रहे हैं थैली को। इन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे लेकिन कहने का तात्पर्य एग्जैक्टली अपोजिट है। जो जिसमें रहने की इच्छा नहीं है वैसा ये माहौल है, और जिसमें आत्मा को पूर्णत्व प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, ऐसा पूरा वातावरण वहां पर है। लेकिन फिर भी वो आते हैं अपने अति प्रिय जनों का संग छोड़कर, कुछ लोगों को लेके आते हैं लेकिन अनंत लोगों का संग छोड़कर आते हैं क्योंकि वो हम पर प्रेम करते हैं, और हम पर प्रेम करते हैं और हमको वापस उनके साथ में चाहते हैं कि हम उनके साथ में रहें। जैसे एक पिता कोई उसको उस बालक उसको छोड़ के जाते हैं, पुत्र उसको छोड़ के जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तो पिता सोचता है कि क्यों नहीं ये मेरा पुत्र जो मूर्ख है वो दोबारा अच्छी सन्मति को प्राप्त करके मेरे घर पे लौट आए और दर दर की ठोकरें खाना छोड़ दे, तो मेरे के लड्डू हलवा पूड़ी खाएं, आराम से लेट जाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे भोजन करें, आनंद से रहे। ये किसी भी पिता की ऐसी इच्छा होती है। वो कभी भी अपने संतान के दुख को नहीं देख सकते हैं। हमको पहले समझता नहीं था, झगड़ते थे माता पिता से, हाँ खास करके 12-13 उम्र से 20 उम्र तक, हाँ, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा विद्रोह करते थे। लेकिन हम लोग विद्रोह करें, प्रेम करें, सहयोग करें, असहयोग करें, कुछ भी करें, माता पिता का प्रेम कभी समाप्त तो नहीं होता है। तो इस दुनिया के माता पिता जो एक जन्म के माता पिता हैं, अगर वो इतना प्रेम करते हैं, मैं भी अपने खुद के अनुभव से देख सकता हूँ कि मेरे संतान के विषय में शुभ के अलावा मैं कुछ चिंतन ही नहीं कर सकता हूँ। चाहे मेरा अपमान भी हो जाए, चाहे मुझे मेरी तरफ विद्रोह भी हो जाए, वाद विवाद भी हो जाए, अपमान भी हो जाए, फिर भी माता पिता का प्रेम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो अगर ये एक जन्म के माता पिता के बारे में सत्य है तो भगवान तो परम पिता हैं। चिरंतन काल के माता पिता है, इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के, इस भौतिक दुनिया के अंतर जो अनंत जन्म हमने लिए हैं उसमें भी वो हमारे माता पिता हैं, और जब हम लौट के जाएंगे तो भी हमारे माता पिता रहेंगे, वो चिरंतन स्थिति है उनकी। अरे इतने दयालु, इतने प्रेमी है वो कि हम अगर किसी सुअर के विष्ठा के अंदर भी कीड़ा बन जाए ना कर्म के अनुसार, तो भी उसके अंदर परमात्मा के रूप में अपना साथ देते हैं। इसका मतलब जी शरीर में वो रहते हैं, वो शरीर पूरा विष्ठा से भरा हुआ है चारों तरफ से, उसके अंदर भी आत्मा का साथ दे रहे हैं, दयालु है भगवान। तो इतना कण कण में, अणु अणु में, हर आत्मा के बाजू में परमात्मा के रूप में बैठने के बाद भी वो फिर से अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ भी आते हैं, क्योंकि वो जीव पर बहुत करुणा और प्रेम रखते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, हमेशा उनके अच्छे के बारे में सोचते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र है, भगवान की करुणा और कृपा और प्रेम हमारे ऊपर कितना है ये समझने के रास्ते में एक और कदम है आज का दिन, और उसको उसी तरह देखना चाहिए कि हम जितना सोचेंगे हम कितने अयोग्य हैं, उतने भगवान की कृपा की महिमा हम अधिक समझ सकते हैं। द मोर यू अंडरस्टैंड हाउ फॉलन वी आर, द मोर एंड मोर वी अंडरस्टैंड हाउ मोर एंड मोर फॉलन वी आर, द बेटर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी विल बी देयर। अगर हम समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, बलवान हूँ, सुंदर हूँ, प्रभावशाली हूँ, तो उतने हद तक हमको भगवान का गौरव, उनकी करुणा का गौरव नहीं समझेंगे हम। लेकिन जिस हद तक हम अपने आप को नम्र बनाएंगे, अपने वास्तविक स्थिति को समझेंगे कि हम कितने पतित हैं, तो ये भगवान की दया को हम और अधिक तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जब जीव भगवान को छोड़कर इस पृथ्वी पर आता है तो दर दर की ठोकरें खाता है, तीन गुणों के प्रभाव में काम करता है, तीन प्रकार के ताप को सहन कर लेता है, फिर भी इंद्रिय भोग के पीछे लगा रहता है, कष्ट भोगता है, पीड़ा भोगता है, रोग का अनुभव करता है, बीमारी का अनुभव करता है, बीमारी के बाद बुढ़ापा के अनुभव करता है, एक दिन भयंकर मृत्यु का अनुभव करता है, फिर दोबारा जन्म का अनुभव करता है, फिर मृत्यु का अनुभव। इस प्रकार से जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय भोग को प्राप्त करने की ईर्ष्या से, उद्देश्य से अनंत काल तक, चिरंतन काल तक अंधकार के कोठड़ी में और दुख भरे स्थिति में जीते रहते हैं। इस स्थिति को देखकर भगवान नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे इसको तारूं, कैसे उसको उठाऊं, कैसे दुख से मुक्त करूं, कैसे उसके मूल स्थिति में उसको मैं लाकर रखूं। ये भगवान का चिंतन है, और हमारा चिंतन क्या है, कैसे इस दुनिया की वस्तुओं को भोगूं, कैसे अधिक अधिक भोगूं। अरे इंसान के जीवन में इतना सा भोजन करता हूँ मैं, हाथी के जीवन में इतना भोजन करूँगा, इंसान के जीवन में इतनी बार सेक्स कर सकता हूँ मैं, कबूतर के जीवन में इतनी बार सेक्स करूँगा, अरे इंसान के जीवन में तो मैं निहत्ते शेर का सामना नहीं कर सकता, अभी मैं अगले जन्म में शेर बनूंगा और एक खूंखार जानवर बनूंगा जिसके विचार से सब लोग डर जाएं। ऐसे अलग अलग भोग, अलग अलग भौतिक प्रकृति पर अपना नियंत्रण जमाने का हम प्रयास करते हैं और अधिक दुखी हो जाते हैं, फंस जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, भगवान को देखा नहीं जाता, इसलिए भगवान प्लानिंग करते हैं अवतार लेने का। और इस श्लोक में कहा गया है संक्षेप में, और अधिक शाम को उसका विवरण होगा, लेकिन भगवान अगर इस दुनिया में भी आते हैं तो भी उनका जन्म हमारे जैसा नहीं होता है। भगवान इस दुनिया में आके कुछ कार्य करते हैं तो भी उनके कार्य हमारे जैसे नहीं होते हैं, हमारे कार्य भौतिक होते हैं, हमारे कार्य जो हैं मटेरियल होते हैं, मटेरियल जिसका कोई आदि है, कोई अंत है, जिसमें कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, ऐसे कार्य हम करते हैं। और अधिकतर हमारे कार्य जो है वो किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होते, केवल स्वार्थी होते हैं। लेकिन भगवान का जन्म जो है, एक तो हमारे जैसा नहीं होता है, हम सब योनि मार्ग से आते हैं लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, हम सब लोग 2.5 किलो के, 3 किलो के होते हैं, रोते रहते हैं और नंगे आते हैं, हम लोग नग्न अवस्था में, भगवान पूरे फुल ब्लोन यूथ, पूर्ण युवा अवस्था में, घुंघराले बाल, धोती कुर्ता, अलंकार पहनकर अवतारित होते हैं। पहले हृदय में प्रकट होते हैं, फिर गर्भ में जाते हैं, फिर वहां से जैसे गर्भ में जाते हैं, जब हम गर्भ में आते हैं तो हमारी माता को उल्टी होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत समय तक पीड़ा होती है, कभी कभी बेड में 9-9 महीने सोना पड़ता है। और भगवान जब किसी गर्भ में आते हैं तो उस व्यक्ति को इतना सुंदर बना देते हैं, वो व्यक्ति के प्रकाश से चारों दिशाएं 10 दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। वो प्रकाश से आकर्षित होकर सारे देवता अपना लोक छोड़कर आते हैं प्रार्थना करने के लिए। इतना सौंदर्य, इतना प्रकाश, इतना तेज उत्पन्न होता है उस व्यक्ति के शरीर से। नंद बाबा के शरीर में आए तो नंद बाबा बहुत खुशप्रद बन गए, जगन्नाथ मिश्रा के शरीर में आए तो वो भी बहुत सुंदर बन गए, सची माता के शरीर में आए तो वो भी बहुत सुंदर बन गए। ऐसा भगवान का जन्म जो है वो अलग है हमारे से, दिव्य है। और उसके बाद भी वो जो कार्य करते हैं, अरे हम भी स्कूल में पेंसिल और खोड रबर चोरी करते हैं, तुमको दंड मिलता है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कोपिन भी चोरी करेगा तो भी दंड मिलता है। लेकिन भगवान चोरी करते हैं तो आज भी हम लोग उसका गुणगान करते हैं, आज भी उसका गीत गाते हैं। भगवान ने मट्टी खाया तो भगवान की मट्टी का भी गीत गाते हैं, अरे काना ने माटी खाई, आज तक उसका गीत गा रहे हैं, 5,000 साल हो गए उसको। और चोरी करते हैं तो कंप्लेंट तो करते हैं उनकी, लेकिन इतनी खुशी पाते हैं कंप्लेंट करते समय, चोरी करते समय देखते हुए इतनी खुशी मिलती है। यहां पर आपका कोई पेंसिल चोरी कर रहा है, मोबाइल चोरी कर रहा है, खुशी मिलती है क्या आपको? लेकिन जब वो चोरी करते हैं तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, चुप चुप के देखते हैं, झाड़ी में से देखते हैं, खिड़की से देखते हैं, झरोके से देखते हैं। ये अंतर है, क्योंकि वो दिव्य है। दिव्य यानी सच्चिदानंद, आनंद से भरा हुआ। जो भी संपर्क में आता है, श्रवण से, दर्शन से, स्पर्श से, उनके विरोधी भास लगने वाले कार्यकलाप भी होंगे तो उससे दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अरे रण में छोड़ के भाग जाते हैं तो रणछोड़ दास के नाम से उनका एक मंदिर बनाया गया, और कैसे भागे उसकी एकदम रसाल चर्चा करते हैं, कैसे भागे। तो ऐसे हमारे भगवान हैं। इनके जन्म की दिव्यता को और इनके कर्म की दिव्यता को अगर हम समझेंगे कि ये हमारे जैसा नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य है, ये जन्म मृत्यु से परे करने वाला है, ये अगर समझ में आया तो उतना ही समझने पर हम भगवत धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि योगी जन अनंत जन्म तक तपस्या करते हैं, अपार कष्ट करते हैं, वो बाद में पहुंचते हैं ब्रह्म ज्योति में, और वहां पर भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट एड्रेस हो गया उनका, कभी भी वहां से गिर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां से निरंतर कंटिन्यूअसली एक भय रहता है कि हम गिर जाएंगे, क्योंकि आत्मा का पूरा जो स्वभाव है वहां पर प्रकट नहीं होता है, केवल सत्य प्रकट होता है, चित्त आनंद प्रकट नहीं होता है, लीला प्रकट नहीं होती है, प्रेम प्रकट नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना आसान तरीका है, इनके जन्म के और इनके कर्म की दिव्यता को समझ लो, और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, केवल एक प्रामाणिक श्रद्धा की आवश्यकता है। इतने योगी जन है, इतने ज्ञानी जन है, इतने पंडित लोग हैं, हिमालय में रहते, तपस्या करते, योग करते हैं, सिद्ध योग सीखते रहते, वो तीनों जो लोग मार्ग है, भोग, सिद्धि और त्याग, वो आत्म केंद्रित हैं, वो खुद के लिए हैं। मुझे भोग मिलना चाहिए या मैं त्याग करूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं विरक्त बनूंगा, या मुझे कोई अपार बल, अलौकिक बल प्राप्त होना चाहिए। ये तीनों मार्ग में मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, क्योंकि खुद से केंद्र में है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतः एव शांत, क्योंकि वो खुद की कामना नहीं करता है। ये भक्ति का मार्ग जो है वो भगवान को केंद्र स्थान में रखते हैं, और जब भगवान को केंद्र स्थान में लगते हैं तो सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, भुक्ति की, मुक्ति की और सिद्धि की। इसलिए जब वहां पर उसका अंजाम प्राप्त होता है तो वहां से वापस आने का कोई भय नहीं रहता है। हम सबको डर है कि वापस आना पड़ेगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए श्रद्धा के साथ में कि जब हम भगवान के व्यक्तित्व का भजन पूजन सेवन करेंगे तो हमें दोबारा यहाँ पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी कभी कभी हम सोचते हैं मेडिकल लोग, अरे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कितना बड़ा प्रयास किया गया, एक तो खंभा तोड़ के आना पड़ा, आधे इंसान का आधे सिंह का शरीर धारण करना पड़ा, शस्त्र अस्त्र होकर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना है ये कंडीशन लेना पड़ा, नाखून को लेकर बहुत देर तक युद्ध करना पड़ा, फिर वो जमीन पे नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, थल में नहीं, आकाश में नहीं, पानी में नहीं, ऐसे बीच में दहलीज पे खड़े होकर कितना बड़ा प्लान बनाना पड़ा सिस्टमैटिकली। अरे इतना करने के बदले में एक ऐसा माइन्यूट रूप धारण करते और उसके हार्ट में जाते और वहां से मेन आर्टरी को कट करते है ना, इतना सिंपल काम है, कोई तकलीफ नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं, नॉन इन्वेसिव इंटरवेंशन। और वो मर जाता अचानक, अचानक चिल्लाते हुए, कहाँ है तुम्हारा भगवान, प्यों करके गिर जाता। क्यों, क्या हो गया, उसका हृदय का ब्लड सप्लाई बंद हो गया, वो मर गया। लेकिन आप सोचिए इतना बड़ा आयोजन है, इतना दिव्य रूप है, इतने हाथ है, इतना अद्भुत तरीका है मारने का, फिर उसके बाद में पेट फाड़ना है, उसके बाद में हाथों को निकाल कर गा माला के रूप में पहनना है, फिर उसके बाद में जैसे फल तोड़ते हैं आम पेड़ से वैसे हार्ट को तोड़ देना है और जमीन पर फेंक देना है, उसके बाद में मरे हुए हिरण्यकश्यप को ढकेल के फेंक देना है नीचे, फिर सब राक्षसों का आक्रमण है, फिर उनके साथ युद्ध है, फिर क्रोध से गर्जना है, पूरा सातों लोक जो है वो कांप रहा है, वैकुंठ तक आवाज जा रही है विरजा को पार करते हुए इनकी गर्जना की। सब क्यों करते हैं ऐसा, इतना सारा एलोबोरेट प्लान क्यों करते हैं, वो भी कैसे इंस्टेंट प्लानिंग है ये, अरे उसने बोला इधर भी है उधर आ गए। पहले सोच के रखा नहीं था कि वो बोलेंगे कि इधर है फिर मैं उधर आऊंगा, ऐसा नहीं था, वो ऐसे बोलेंगे ऐसे ही देख रहे थे इधर भी है कि हाँ इधर भी है, तत्क्षण पैदा हो गए, खंभे को माता बनाया और जन्म लिया। इतना सब क्यों करते हैं, क्योंकि आप और हम जो है ना उसको जन्म जन्मांतर तक याद करते रहे, वर्णन करते रहे, स्मरण करते रहे, लोगों को बताते रहे, उसका आनंद लेते रहे, उसका रस लेते रहे, और दुखी दुख भरे जिंदगी में भी खुशी का अनुभव करें, इसलिए वो काम नहीं करते हैं, लीला करते हैं। ऐसे लीला धाम को हमारा बारंबार प्रणाम है, ऐसे हमारे भगवान हैं, उनकी एक गतिविधि कभी रिपीट नहीं होती है, वैसे के वैसे गतिविधि भी करेंगे तो भी वो नवनवायमान होंगी, उसमें कोई भी आपको कभी भी बोर नहीं होगा, मन आपका रिझते रहेगा हमेशा नवनवीन नवनवीन तरीकों से। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कल्प में जब कालिया का उद्धार किया तो सीधे उसको बोला चले जाओ यहाँ से, तो फिजी आइलैंड में चला गया। अगले कल्प में बोला ए अभी मत जाओ, थोड़ा रुको, पक्षी बनो, पंख पैदा करो, मैं आप पर बैठूंगा और स्वर्ग लोकों की सैर करूंगा। तो वो सर्प जो है कालिया, वो सर्प पक्षी बन गया और उसके पीठ पर बैठकर ठाकुर जी ने सभी स्वर्ग लोगों का दर्शन किया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर अभी जाओ, फिर चले गए। कितने कल्प भेद हैं उनके, हर एक बार वही लीला नए नए तरीके से करते हैं। हो सकता है कि इस बार एक ताल में नृत्य करेंगे तो अगले बार अगले ताल में नृत्य करेंगे, डिफरेंट, वो जो डिफरेंस है ना वो नर्तकों को पता चलेगा ये कौन सा कदम है, ये कौन सा स्टेप है। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, इतनी सुंदर मधुर कर्ण मधुर आत्मा मधुर लीला करते हैं जिससे जीव, एक विशेष बात है उसके अंदर कि इनकी लीलाओं का श्रवण आप कितने भी कष्ट में होंगे तो आपको वो कष्ट से बाहर निकालकर आनंद का अनुभव देगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम सब लोग बहुत दुखों का अनुभव करते हैं, उसके लिए एक ही उपाय है, याद रख के उस समय या किसी को याद करवाने को बोलना है अपने को भगवान की लीला का श्रवण करना है। जब भी आपको दुख होगा, कष्ट होगा, मन बहुत उद्विग्न हो गया है, कष्ट से पीड़ित हो गया है, परेशान हो गया है, आत्महत्या करने का दिल कर रहा है, तब उसको आपको खुद को याद नहीं आएगी, किसी को बता के रखो जब मैं आपके पास कष्ट से फोन करूंगा तो आप मुझे कृष्ण का लीला पढ़ने की याद करना, और तुरंत आप देखिए लीला श्रवण कीजिए या पढ़ना आरंभ कीजिए, आप तुरंत उस दुख से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि दुख जो है वो भौतिक स्तर पर होते हैं, तीन गुणों के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं, और दिव्य आनंद जो होता है वो दिव्य गुण पे होता है जो तीन गुणों के परे होता है। तो भगवान की लीला हमें हमारे स्थिति से उठाकर दिव्य स्थिति में विराजमान करती है, और दिव्य स्थिति में चिरंतन आनंद है उसका तुरंत अनुभव कराती। प्रभुपाद कहते हैं इंस्टेंटली वन फील्स द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब उनकी लीला को सुनते हैं, तो मन बुद्धि अहंकार के सारे स्तरों को पार करते हुए हम आत्मा के सर पर स्थित हो जाते हैं, और आत्मा के सर पर स्थित होते ही वहां का दिव्य आनंद इंस्टेंटली तत्क्षण प्राप्त होता है। ये शक्ति है उसके अंदर, उत्तम कहते हैं उसको, अपने तम के अंधकार से उठाने की शक्ति है, ऊर्ध्वगमन करने की शक्ति है, और दिव्य आनंद का तत्क्षण अनुभव करने की शक्ति इन लीलाओं में, इन नाम में, इन धाम में, हर जगह पर है। तो बहुत सुंदर दिन है आज का, भगवान के जन्म का। तो इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि कंस का आतंक बहुत बढ़ गया था, ये कंस जो है वो उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन हमेशा दुर्जनों का संग करने से, अच्छे कुल में जन्म होने पर भी, वो भी यदुवंशी था, ऐसा नहीं कि वो राक्षस कुल का था, लेकिन वृत्ति से राक्षस बनना पसंद किया उसने, बाय चॉइस, बाय एसोसिएशन वो राक्षस बन गया, और इतना बल था उसके अंदर, बहुत तपस्या की थी उसने, बहुत सारा सिद्धियां थी उसके पास, और दुनिया भर के राक्षसों को जा जाकर चैलेंज कर करके उसने अपने वश में कर दिया था। ये गर्ग संहिता का एक पूरा अध्याय डेडिकेटेड है कंस के गौरव को वर्णन करने के लिए। इतना बल था उसके अंदर, अगर वो केवल उसकी मति सही जगह पर होती तो एक महान संत के रूप में उसका वर्णन होता, एक दिव्य विभूति के अंदर उसका जन्म वर्णन होता, लेकिन इतना महान व्यक्ति एक दूसरे से देखा जाए तो, बल से और ज्ञान से और प्रभाव से, केवल कुसंगति की वजह से पृथ्वी का भार बना, पृथ्वी के लिए आतंकवादी बना, पृथ्वी को कष्ट देने वाला बना। हमारी पृथ्वी देवी जो है वो उसका एक शक्ति ऐश्वर्य ऐसा है कि उसकी शक्ति धारण करने की है, वसुंधरा कहते हैं उसको, वो कुछ भी धारण कर सकती है, उसके लिए कोई चीज़ बोझ नहीं होती है। चाहे जितनी जनसंख्या बढ़ जाए, चाहे जितने पर्वत बढ़ जाए, चाहे जितने समुद्र बढ़ जाए, जल सरोवर बढ़ जाए, पृथ्वी को भार नहीं होता किसका। बड़े प्रेम से वो, जैसे अगर चार बालक भी पेट में है माँ के किसी के, हमने देखा है हॉस्पिटल में क्वाड्रुप्लेट्स, चार चार बालक एक प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन माता को उसका बोझ नहीं होता कभी, और होता भी है तो वो मानती नहीं है उसको, वो फील नहीं करती उसको, क्योंकि प्रेम की शक्ति ऐसी होती है कि उससे प्रेम की वजह से कोई बोझ नहीं होता है। अगर हमारे घर में अगर 9-10 महीने के अंतर में दो बच्चे हो गए, दोनों को उठाते हैं हम लोग, दोनों को लेके चलते हैं, दोनों को साथ साथ मैया दूध पिलाती है अपने स्तनों में, लेकिन थक नहीं जाती है वो, थक जाती है शरीर से लेकिन मन से थकती नहीं है, भावना से और प्रेम से थकती नहीं है। तो वो प्रेम की वजह से पृथ्वी देवी कभी भी किसी भार को भार नहीं समझती है, लेकिन असत्य और पाप उसका बहुत तकलीफ होता है उसको। वही बालक जब विद्रोह करता है, पाप कर्म करता है, तो माता को बड़ा दुख होता है। बेटों को और कन्याओं को खिला पिला के बड़ा करने में कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन उनका जब बुरा बर्ताव देखते हैं तो वो बड़ा कष्ट होता है। तो पृथ्वी ये कंस के और उसके सहयोगियों के आतंक से बहुत त्रस्त हो गई, और वो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को कंप्लेंट किया उन्होंने, दुख भरा दास्तान सुनाया। तो ब्रह्मा जी उनको सबको, क्योंकि वो जब आई तो केवल वो पीड़ित नहीं थी, देवता भी पीड़ित थे, सब देवता आतंकग्रस्त थे, वो सब भी वहां पर पहुंच गए, और फिर ब्रह्मा जी उन सबको लेके क्षीर सागर के किनारे गए, और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया पुरुष सूक्त, और क्षीर सागर के अंदर विराजमान भगवान विष्णु ने उनको जवाब दिया। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ऐसा वर्णन आता है कि वो क्षीर सागर विष्णु जो है प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को और पृथ्वी को और सारी देवताओं को लेकर गौलोक धाम चले गए और गौलोक धाम में श्री हरि प्रकट हो गए। पृथ्वी रो रही थी तो श्री हरि ने कहा, यहाँ पर रोने का काम क्या है, अब तो गौलोक धाम में आ गई हो, तुमने व्यथा सुनाती है। तो व्यथा सुनाने के बाद में नरसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं और अपने सारे भक्तों के साथ में श्री हरि के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो वहाँ से प्रभु रामचंद्र भरत लक्ष्मण के साथ में प्रकट होते हैं और अपनी चतुरंगी सेनाओं के साथ शस्त्र अस्त्र के साथ भगवान हरि में विलीन हो जाते हैं। नर नारायण भगवान के हरेक अवतार प्रकट होते हैं उनके सामने और सब श्री हरि के अंदर प्रकट हो जाते विलीन हो जाते हैं। और फिर भगवान ये सब दिखा रहे हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य कोई चिंता का कारण नहीं है, ये सब मैं ही हूँ, ये सब मेरे ही अवतार हैं और दिव्य लीला आगे भी कर चुके हैं और ऐसे अनेक खूंखार संकटों का उन्होंने नाश भी किया हुआ है। फिर वो वादा करते हैं कि हम आएंगे, सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि आप सब यदु और गोकुल में, यदुकुल में और गोकुल में जन्म लेना, अपने अपना स्थान, टेक योर पोजिशंस, फिर मैं आऊँगा। तो ये जब वर्णन हो रहा था, बड़ा विस्तार में वर्णन है, वहाँ पर इतना नहीं कर सकते वर्णन अभी, कौन कौन क्या क्या बनेगा पूरा वहाँ पर डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन है, डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन क्या बनेगा और कहाँ कहाँ बनेगा और क्या क्या करेगा। उसके बाद में देखते हैं कि वो वर्णन जब हो रहा है तो अचानक राधा रानी बेहोश हो जाती, बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे राधा रानी बेहोश क्यों हो गई, उसको होश में लाया गया। और उसमें लाने के बाद में पूछा भगवान ने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं मुझे छोड़कर, ये सोचकर ही मुझे बेहोश हो गई, मैं ये विचार भी सहन नहीं कर सकते कि आपके अलग रहूंगी, आपसे विरह में रह सकती हूँ क्या। तो उन्होंने कहा ये सब प्लानिंग जो मेरा है वो आपके साथ में है, आप मेरे साथ में हो, अरे मैं गोलोक छोड़कर नहीं जा सकती, जिस जगह पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जिस जगह पर श्री जमुना देवी नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। तो भगवान ने कहा कि आपके इस मंतव्य को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने श्री वृंदावन धाम, हमारे गौलोक धाम का 84 कोस का एक हिस्सा जो है वो गिरिराज गोवर्धन और जमुना के साथ में मैंने ऑलरेडी नीचे भेज दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही गोलोक धाम और यही गिरिराज गोवर्धन और यही जमुना जी हमारे गोवर्धन कृषि क्षेत्र में प्रकट हुआ है, ये सबका हमें अनुभव करना चाहिए। अल्टीमेटली भगवान ने 84 कोस का हिस्सा जमुना गोवर्धन के साथ में भेज दिया और हम जाते हैं वहाँ पर। तो कभी कभी देखते हैं गटर है, सुअर है, गंदगी है, सुव्यवस्था नहीं है, कायदा नहीं है, कुछ चोरी सब पंडागिरी सब चलता है उधर, तो कुछ अनुभूति नहीं होती अंदर कि क्या भगवान का धाम है क्या। तो धाम जो है वो एक भौतिक स्थिति है निश्चित रूप से, इट इज़ अ फिजिकल रियलिटी नो डाउट, बट वो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल चैलेंज है, एक आध्यात्मिक चुनौती है हमारे लिए। अगर श्रद्धा का बल है तो उस आध्यात्मिक चुनौती में हम जीत जाएंगे, सफल हो जाएंगे, और श्रद्धा नहीं है तो वही भौतिक दुनिया है नष्ट होने वाली, आद्यंतु वंतु, जिसको आदि और अंत है। ये बंद हो सकता है क्या प्रभु जी, बंद हो सकता है, पॉसिबल है, कोशिश करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे गोवर्धन कृषि क्षेत्र में श्री वृंदावन धाम प्रकट हुआ है, ये हमारे लिए फिजिकल रियलिटी है लेकिन एक आध्यात्मिक चुनौती है, स्पिरिचुअल चैलेंज, क्योंकि जितनी हमारी श्रद्धा है गुरुजनों के शब्द पर, गुरुजनों की दिव्य शक्ति पर, उतना हमें दिव्य वृंदावन का अनुभव होगा यहाँ पर। जितनी हमें श्रद्धा है उसके आधार पर यहाँ पर आपके लिए प्रकट होगा, जितनी आपके अंदर साधना का बल है जितने नाम जप करते समय हम एकाग्र रहते हैं और नाम जप की प्रक्रिया के लिए समर्पित हैं, वैष्णवों का अपराध नहीं करते हैं और अपनी सेवा जो कृष्ण की और भगवान के भक्तों की है वो दिल से करते हैं, उतने हद तक ये धाम आपके लिए अधिक अधिक प्रकट होगा। वृंदावन धाम में भी संत लोग कहते हैं, वृंदावन धाम में 60 बिलियन 6000 करोड़ पवित्र स्थान है, रूप गोस्वामी के अनुसार लीला स्थली है, कण कण में लीला है वहां पर। लेकिन जिस स्थान पर डाकू लोग रहते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो स्थान बहुत भयंकर दिखाई पड़ता है। और सब पवित्र स्थान है, ऐसा नहीं कि कोई पवित्र स्थान नहीं, सब पवित्र है, हर एक रज कण जो है पवित्र भूमि है। और जिस पवित्र स्थान पर संत लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, वहां पर दिव्य अनुभूति होती है, क्योंकि धाम भी एक व्यक्ति है, धाम भी एक व्यक्ति है हमारे तुम्हारे जैसा, वो धाम रूप में, कुंड रूप में, सरोवर रूप में, नदी रूप में हमारी सेवा करता है, उस दिव्यता को हमारे लिए प्रकट करता है, भगवान के लिए एक सबस्ट्रेट यानी एक जगह बना देता है जहां पर वो लीला कर सकते हैं। लेकिन वो भगवान से अभिन्न है, एक साथ में ही, एक साथ में भक्त भी है और धाम होते हुए भगवान के अभिन्न भी है। तो वो धाम व्यक्ति रूप जिसके अंदर जहां पाप लोग करते हैं वो अपनी महानता और महिमा को छुपा देते हैं। धाम विल कंसील द ग्लोरीज इफ देयर आर सिंफुल एक्टिविटीज। और धाम में जब भजन होता है तो धाम अपने मूल गौरव को प्रकट करता है, और जितना अधिक भजन होगा उतना अधिक प्रकट होगा, क्योंकि भगवान की महिमा और गौरव अनंत है, तो कुछ कमी नहीं उसके अंदर कि भाई हो गया, अभी 100% हो गया, अभी आगे क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना भजन होगा, भजन भी अनंत है, भगवान का नाम अनंत है, भगवान की सेवा अनंत है, वैसे भगवान की महिमा भी अनंत है। और उस धाम में एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर जब हम ये सब कार्य करते हैं तो उस कार्य के दिव्यता की वजह से धाम भी स्वतः अपना गौरव जो है प्रकट करते जाता है। तो अगर हम सोचेंगे अरे या तो ये आर्टिफिशियल है, तो ऐसे ही डाल के रखा है, ये पत्थर तो यहां से आए, ऐसी जड़ बुद्धि हम रखेंगे तो हमारे लिए वही भौतिक पत्थर रहेगा। वो जड़ता को हटाकर हमारी बुद्धि से अपनी मति को शुद्ध करके हुए इसकी दिव्यता का अनुभव करेंगे श्रद्धा के साथ, तो साक्षात गौलोक धाम आपके सामने प्रकट है। चाहे वो मथुरा का वृंदावन धाम हो जहां पर हम गडर को देखते हैं वो हो, या यहां का हो, या बेल्जियम का हो, या रामकिली में जब सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया था अपने घर में वो हो, ये सब हमारे लिए एक आध्यात्मिक चुनौती है। और श्री गुरुदेव, परम गुरुदेव की अपार आध्यात्मिकता, दिव्यता उनके जीवन की जो है उसकी वजह से ये सब प्रकट हो रहा है बड़े अद्भुत तरीके से। ये सब भगवान की लीला स्थली है, भगवान यहां चिरंतन लीला करेंगे, कर रहे हैं। ये सारे पेड़ अभी श्री जी का स्वरूप होंगे, साधु संत यहां पर आके तपस्या करेंगे पेड़ के रूप में, यहां भगवान के दिव्य भक्त जो है पंछी पंछी बनेंगे, यहां के जानवर बनेंगे, यहां के कीटक बनेंगे, इस धाम का आश्रय लेंगे, इस धाम के रज का कर्ण का स्पर्श करते ही जन्म मृत्यु से मुक्ति पाएंगे। ये सब धाम का गौरव प्रकट होगा। इस रज के कर्ण के स्पर्श से जन्म जन्मांतर के संचित नष्ट हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध बनेगी और भगवान के अस्तित्व का अनुभव करेगी। हर एक पेड़ के पास, हर एक कुंड के पास, हर एक लीला स्थली के पास भगवान आपको अनुभूति देंगे कि मैं हूं यहां पर। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी आते हैं, हम किताब में पढ़ते हैं तो हम बच्चे लोग बोल सकते हैं कि ये तो ऐसे ही बचपन की कहानी है, हमको माता जी सोने के टाइम पर सुनाती थी, तो पता नहीं सच है कि झूठ है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वो कथा भी अगर हम श्रद्धा से सुनेंगे तो वो आपको जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर सकती है। इस स्थिति में अभी मुक्त होना बाकी है, उस स्थिति में भी आपको दिव्यत्व का अनुभव दे सकती है। चैलेंज क्या है इसके अंदर, चुनौती क्या है? श्रद्धा, कि हमारे मन में कितनी श्रद्धा है, हम कितना विश्वास रखते हैं इस बात पर। जितना श्रद्धा उतनी अनुभूति, जितना विश्वास उतना अनुभव प्राप्त होगा। तो गौलोक में जाकर भगवान ऐलान कर रहे हैं कि मैं आने वाला हूं, तो उसके बाद क्या होता है? राधा रानी फिर खुश हो जाती है कि हम भी चलेंगे। यमुना जी निकलती है वहां पर, एक लक्ष्य पहियों वाले रथ पर बैठकर निकलती है, हजारों लाखों घंटाएं लगी हुई अलंकार लगे हुए इस रथ में बैठकर निकलती है, वैकुंठों को पार करते हुए, विरजा को पार करते हुए ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है, फिर स्वर्ग लोगों को पार करते हुए पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी में भी उनका एक कारण होना चाहिए अवतार का। तो सूर्यदेव उषा देवी का विवाह होता है और पहली बार बहुत डर के मारे उषा देवी का संबंध होता है पतिदेव से, इतने तेज वाले पति हैं, डर जाती है। तो पतिदेव कहते हैं ये पुत्र होगा आपको, लेकिन उसके लिए उसको देखकर सारी दुनिया डरेगी, सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर उसको डर सोचकर डरेंगे उसके बारे में, तो दुख हुआ उसको। तो अगली बार अपने आप को समझा बुझा कर तैयारी करके चली गई, प्रेम से सेवा किया भगवान सूर्यदेव का। उन्होंने कहा अभी ये कन्या होगी और नदी रूप होगी, देवी रूप होगी, उसके जल में जो कोई स्पर्श करेगा, दर्शन करेगा, उसका स्मरण करेगा, उसमें स्नान करेगा, वो व्यक्ति हमारे पहले बेटे के भय से मुक्त हो जाएगा। कितनी भाव की आवश्यकता है, भाव बदल गया परिणाम बदल गया। भाव भय का था यमराज पैदा हो गए, भाव प्रेम का था यमुना पैदा हो गई। आप सोचिए हमारे लिए भी यही है, हमारा भाव गलत है तो हम देवता के कुल में जन्म लेंगे फिर भी राक्षस बनेंगे, है ना। यदु कुल में जन्म लेकर भी कंस राक्षस बना, मति भ्रष्ट थी उसकी, और विभीषण राक्षस के कुल में जन्म हुआ उसका, मतलब एक्चुअली वो तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था लेकिन राक्षसों का परिवार था पूरा, विभीषण का कुंभकर्ण और सब कुछ लोग बहुत भयंकर राक्षस थे वो, लेकिन वो राम नाम का जप कर रहे हैं लंका में रहकर। हाँ, ये सब मति का परिणाम है। तो मति जो है उसको भ्रष्ट करना या अच्छे रखना हमारे हाथ में है। तो इस तरह यमुना अवतरित हुई, फिर गिरिराज गोवर्धन निकले वहां से, हजारों करोड़ आकाश में थे वो, हिमालय में द्रोणगिरी के पुत्र में जन्म हुआ उनका, और द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, बड़े सुंदर थे वो, उनके अंदर जड़ी बूटियां, रत्न माणिक, गुफाएं, सरोवर, नदियां, जलाशय, फल फेल, फल फूल के पेड़, बेलियां, रंग बिरंगी वातावरण, अनेक वन, चरने के लिए घास फूल, खाने के लिए, बैठने के लिए, जप करने के लिए गुफाएं, एकांत स्थान, पब्लिक स्थान, उपवन, हर प्रकार की व्यवस्था, इतना सुंदर वातावरण, सात्विक, परम सात्विक। तो पुलत्स्य मुनि के कारण वो वृंदावन पहुंच गए। इस तरह से सीन तैयार हो गया। फिर क्या हुआ, फिर पृथ्वी पर क्या सीन चल रहा है, पृथ्वी पर ये सीन चल रहा है कि गर्ग मुनि आते हैं उग्रसेन के दरबार में मथुरा में। मथुरापुरी का इतना सुंदर वर्णन दिया है उसमें, गर्ग संहिता में इतना सुंदर वर्णन दिया है कि दिव्य गौलोक धाम ही अवतरित हुआ, ऐसा उसका वर्णन, हर एक वस्तु का वर्णन। उसमें एक विशाल आसन में उग्रसेन महाराज बैठे हुए हैं और वहां पर महातेजस्वी गर्ग मुनि प्रवेश करते हैं। उग्रसेन उठते हैं, अपने आसन पर उनको बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका गौरव करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रदक्षिणा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। और गर्ग मुनि कहते हैं कि तुम्हारे परिवार की जो कन्या है, देवक राजा की कन्या देवकी, उसके लिए मेरे विचार से पूरे ब्रह्मांड में वसुदेव के अलावा कोई योग्य वर नहीं है, क्योंकि उग्रसेन के कजिन ब्रदर थे देवक, शूरसेन के पुत्र हैं सब। तो उनकी इच्छा के अनुसार तुरंत देवक जो है अपनी कन्या का विवाह वसुदेव से कर देते हैं, और कई अरब घोड़े, कई लाखों हाथी, कई सैकड़ों हजारों रथ, सोने चांदी के जेवरात दहेज भी देते हैं। और बड़ा सुंदर वातावरण है, सब मांगलिक वातावरण है, सब लोग मंगल गान कर रहे हैं, वेदों की ऋचाओं को गा रहे हैं, ब्राह्मण श्लोक गा रहे हैं, यज्ञ हवन हो रहा है, बड़ा पवित्र वातावरण था देवकी और सुदेव का, बड़ा दिव्य विवाह हुआ। तो प्रेम के वश, क्योंकि कंस की चचेरी बहन थी देवकी, प्रेम के वश उन्हें कहा कि आज हमारा आपका रथ जो है, जो बारात है आपकी, वो हम चलाएंगे। सारथी को उतार दिया। देखो प्रेम कैसा होता है, प्रेम होने की वजह से आदमी अपना पद भी भूल जाता है और कोई भी न्यून काम करने को तैयार हो जाता है। जैसे कि माता समझो चीफ मिनिस्टर है आपकी, लेकिन जो गर्भवती होती है और आपका जन्म होता है तो आपका टट्टी पेशाब साफ कर दिए, वो ये नहीं कहेगी कि मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कुछ लोगों को रखूंगी ये सब करने के लिए। प्रेम के वश करती है, वो गंदा काम है लेकिन प्रेम के वश करती है। तो कंस का प्रेम है देवकी के ऊपर, इसलिए वो क्षत्रिय होने पर भी अपने बहन का रथ जो है वो हाँकने को तैयार है, लगाम अपने हाथ में लेता है, बड़े इत्मीनान से रथ चलाता है। क्या सीन है, बहुत सुंदर वातावरण है, पवित्र सुगंधी द्रव्य का खुशबू आ रही है, सब जगह आनंद है, सब ब्राह्मण श्लोक गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब भाट गौरव कर रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, भेरिया बज रही हैं, अलग प्रकार के दुंदुभियाँ बज रही हैं, फूल उधेड़े जा रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, लोगों को भेंट दी वस्तु जा रही है, मिठाइयाँ बटी जा रही हैं और बारात जा रही है वसुदेव के घर पे। और अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का तू रथ हाँकने जा रहा है उसी का आठवां पुत्र तेरे वध का कारण होगा। तो सीन बदली हो गया एकदम। एक भक्त और अभक्त के परीक्षा का ये एक प्रसंग है। हम सच में कौन है ये तब पता चलता है जब हम पर संकट आता है। द रियल यू इज मैनिफेस्ट वेन पुट अंडर स्ट्रेस। जब किसी भी संकट में हम आते हैं तो हमारे अंदर का जो सत्व है, रियलिटी जो है वो बाहर आती है। अब तक तो प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है, क्षत्रिय होते भी शूद्र का कार्य किया जा रहा है, इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम, इतना बारात चल रही है। और जैसे ही स्वार्थ के बीच में छेद हो गया, तुरंत इतनी जोर से गर्जना की उसने कि सब गाने वाले बंद हो गए, सब वाद्य बंद हो गए, सब फूल बिखेरना बंद हो गया, सब दान धर्म बंद हो गया, सब लोग मुड़के देखा क्या हो गया, तो क्या देख रहे हैं, अचानक जिसके हाथ में लगाम था उसके हाथ में देवकी के बाल हैं, जो शादी के लिए सुशोभित किए गए हैं, अलंकृत किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं जल से विवाह के उपलक्ष में, उन पवित्र बालों को पकड़कर दूसरे हाथ से अपना खड्ग निकाला हुआ है, जो खड्ग देवताओं को भयभीत करता है, जो आतंकवादियों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पापियों को दंड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक स्त्री को मारने के लिए उठा के खड़ा है। तो कंस का जो रियलिटी है वो बाहर आ गई, वसुदेव की जो रियलिटी है वो भी बाहर आएगी। अभी वसुदेव क्या थे, उनका मन का संतुलन कैसा था, वो कितने होशियार थे, वो कितने दिव्य स्तर पर थे, प्रसंग को देखते हैं वो कि बड़ा बाका प्रसंग है, तुरंत बात करना शुरू करते हैं और झट से एक मतलब ऐसे समय पर जैसे कि अभी वो तलवार से कुछ क्षण के अंदर, आंख मिचौली होने के अंदर तुरंत उसका सर काटने वाला था, वो तो हवा में पकड़ लिया उसका हाथ। वो भैया आप कंस हो, महाराज कंस हो, अरे आपने जब बकासुर और अघासुर का दमन किया युद्ध में, तो उसकी बहन पुतना आपके साथ युद्ध करने आई थी, तो वो केवल स्त्री थी इसलिए आपने कहा कि आपसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी बहन बनाऊंगा। पुतना युद्ध करने आई थी स्त्री रूप में, फिर भी आपने कहा कि नहीं आप मेरी बहन बनो, और आप उसको बहन बना लिया और खुद की बहन को मारने जा रहे हो। इट्स अ गुड लॉजिक, टाइमली लॉजिक। और कहते आप वीर हो, आप क्षत्रिय हो, आप हमेशा वीरों पर विजय प्राप्त करते हो। उन्होंने लिस्ट बताया, तनावर्त, द्विविध, नरकासुर, प्रलंबासुर, कैसे महान भयंकर केशी, अरिष्ट जैसे भयंकर राक्षसों का आपने वश करके नौकर बना दिया है। वो समझते हैं वो आपके दोस्त हैं लेकिन आपके नौकर हैं वो, एक्चुअली आपको टैक्स देते हैं जिंदा रहने के लिए। ऐसे वीर पुरुष होते हुए भी एक अबला नारी पर, वो भी उसके विवाह के दिन आप तलवार चलाना चाहते हो। बहुत सारी बातें की लेकिन समझ में नहीं आया कंस को, क्योंकि कंस एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चला गया था और उसको ये सब फिलोसॉफिकल बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो बहुत देर यहां वहां की सोच समझ के, बुद्धिमानी के आधार पर बात करने पर भी जब ही कंस के समझ में नहीं आया तो वसुदेव ने सोचा कि इसको भी अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं जो इसका समझ में आ जाए। हाँ, प्रचार भी ऐसे करना चाहिए। तो प्रचार करते ना हम लोग, तो हम लोग एकदम, हमारे ऐसा मुझे अनुभव है कि कभी हमारे प्राइवेट ग्रुप में हम कुछ एकदम बड़ी बात डिस्कस करते हैं कभी कभी, तो हमारे मीटिंग के अंदर कुछ लोग प्रभावी हो जाते हैं और तुरंत जाकर जो पेशेंट एडमिट हो गया उसको बोलने लगते हैं। वो ये सोचते नहीं कि ये बात किस स्तर पर थी और मरीज कौन से स्तर पर है। मरीज गांव से आया हुआ है, शराबी है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है और यहाँ पर आग बनवाने के लिए आया है, तो उसको राधा कृष्ण के प्रेम संबंध के बारे में बताना नहीं चाहिए। उसको बोलना चाहिए पहले मांस छोड़ो, कितना हेल्थ के लिए खराब है, लीवर बिगड़ता है, और दारू मत पियो, तंबाकू मत खाओ, कैंसर होता है। तो उसको लगा कि कंस बड़े विद्वान हैं, वैसे विद्वान थे वो, तो उसके स्तर पे पहले बात किया उन्होंने, समझ में आया उसको, लेकिन वो अपने स्तर से बहुत नीचे गिर चुका था स्वार्थ के वश। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम थोड़ा नीचे आते हैं, उसके स्तर पे आके समझाते हैं उसको। तो उनको बताया कि देखो भाई, तुमको भय किससे है? मेरे पत्नी के 8वें बालक से भय है तुमको। हम आपसे वादा करते हैं कि मुझे होने वाली हर एक संतान आपके सुपुर्द की जाएगी। तुरंत समझ में आया उसको, इमीडिएटली अंडरस्टूड कि ये पते की बात है। और वसुदेव की इतनी महती थी, इतनी महिमा थी, वसुदेव पहले से प्रसिद्ध थे सत्य वचनी के रूप में, और कोई बोलता तो ये नहीं मानते शायद, लेकिन वसुदेव बोल रहे हैं तो ये सत्य हो सकता है और वो करेगा। तुरंत वो जो है ना, वो इतना आनंद का वातावरण था, एकदम टेंशन वातावरण बन गया, समझो कोई बारात जा रही तो बम फोड़ हो गया तो कैसे होता है, तुरंत सब चीख पुकार, खून खराबा, भाग रहे सब, यहाँ पे पूरी पवित्रता नष्ट हो जाती है और सन्नाटा मृत्यु का छा जाता है। वैसे वो मंगल वातावरण में एक सन्नाटा डर सा बैठ गया, क्या होगा अभी। अचानक फिर वसुदेव की बात सुनकर कंस ने तलवार म्यान कर ली, देवकी के बाल छोड़ दिए, लगाम छोड़ दिया, रथ छोड़ दिया, उतर के सीधे अपने घर चला गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। वसुदेव खुद अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले गए और घर पे गया, जब सोचा उसने, अरे पता नहीं क्या होगा, 10,000 शस्त्रधारी सैनिक लगा दिए वसुदेव के महल पे। अरे आजकल भी जो होता ना जेड सिक्योरिटी, वो भी 250 लोगों का होता है, 250 आर्म्ड सोल्जर्स, 10,000 सैनिक भेज दिए शस्त्र के साथ में, पूरा घेर दिया उसके महल को तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके बाद पहला बालक हुआ, कीर्तिमान राम रखा गया। तब तक वो जेल में नहीं थे, अपने महल में नजर कैद में थे। हाँ, तो फिर पहला बालक को लेकर वो दरबार में आए और कहा कि ये मेरा पहला बालक है, इसका नाम कीर्तिमान है, आपकी सेवा में हाजिर है। अरे वसुदेव की सत्यवचनी कार्य को देखकर इतना कंस प्रभावित हो गया, उसका मन करुणा से भर गया, उसके आंखों से आंसू आए, प्रेम उत्पन्न हुआ वसुदेव के प्रति। अरे वसुदेव क्या व्यक्ति हो, हाउ ग्रेट पर्सनालिटी यू आर, सोच सकते हैं आप, आपका पहला बालक हो गया है, नन्ना सा, अभी वो तो नवजात शिशु है, उसने अभी माँ का दूध भी नहीं पिया है, उसको आप मौत के मुंह में लेके जा रहे हो, लो भाई मेरा शब्द मैं पूरा कर रहा हूं। तो वसुदेव ऐसा एक उदाहरण है। हाँ, जैसे हमारा रघुकुल है, प्राण जाई पर वचन न जाई, इंटीग्रिटी इसको कहते हैं, इंटीग्रिटी यानी जो हम कहते हैं उसको पालन करते हैं। भले मरने का प्रसंग आ जाए, भले संकट आ जाए जीवन में, भले हमारा नुकसान का घटना हो जाए, फिर भी जो वचन दिया है उसको आदमी पालन करता है, वो भक्त है, वैष्णव है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, ही इज अ डेवलप्ड आर्य। तो वसुदेव ने वचन तो दिया था लेकिन पूरा भी किया, ये देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जाओ वसुदेव जाओ, इस बालक से मैं कोई डर नहीं है, मैं आपको अभय देता हूँ, चले जाओ उसको लेकर। नारद मुनि जनक महाराज को वर्णन कर रहे हैं सब प्रसंग, फिर कहते हैं जैसे ही वसुदेव अपने घर चले गए बड़ी खुशी से कि बच गया मेरा बच्चा, तुरंत मैं पहुंच गया कंस के पास, नारद मुनि खुद कहते हैं। और बताया, अरे कंस ये तो देवता लोग होते हैं ना, ये वाम मार्गी हैं, वामती गति है उनकी, इनके बातों पर भरोसा मत करना, ये सब नंद महाराज गोकुल वाले, ये वसुदेव देवकी, ये सब देवताओं के अवतार हैं, ये अपना अपना स्थान जमा चुके हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम समझ, तुम थोड़े होशियार हो, लेकिन तुम्हारा शत्रु जो है वो सब जगह फैल गया है, तुम्हारे घर के अंदर जन्म लेकर स्थित हो गए सब लोग। और रही बात एक से आठ नंबर की, अरे एक से आठ नंबर तब आता है जब शुरू कहाँ से होता है उस पर डिपेंड रहता है वो। जब गोल वस्तु होती है ना, तो उसको आप जहाँ शुरू करोगे उसके अनुसार नंबर आता है। अगर शुरू करने की जगह चेंज कर दिया तुमने तो नंबर भी चेंज होता है। तो इनकी गति में आठवां कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये समझ में नहीं आएगा तुमको। ये तो कमल के फूल की तरह है, लो ये कमल का फूल पकड़ो, लो इस पंखुड़ी को पकड़ो, इसको नंबर एक गिनो, अभी आगे गिनते जाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अभी इसको पकड़ो, इसको एक नंबर करो, फिर गिनो, अभी सोचो कि जो पहले आठ नंबर पे आया था अभी उसका नंबर क्या है, अभी तो चार नंबर पे आ रहे हो। तो शुरू कहाँ से करेगा ये कौन बताएगा आपको, डोंट टेक चांस। एकदम कंस को जैसे साक्षात्कार हो गया, अरे बाप रे इतना दिव्य ज्ञान दिया मुझे, हाँ संकट से बचाया, नारद मुनि जी आप बड़े महान संत हो, बड़े करुणामय हो, मेरे हित के बारे में सोचते हो। नारद मुनि बड़े बड़े विचित्र संत हैं, देवऋषि नारद, वो भगवान के अवतार को देखने के लिए आतुर है बहुत। ही वॉन्ट्स कृष्णा टू अपियर वेरी फास्ट। अरे कंस अभी करुणा वाला बन गया, दया वाला बन गया, और ये बच्चे नहीं मरे तो फिर वो कैसे होगा, इसका पाप का भड़ा कैसे भरेगा, तो इसलिए उसको भड़काया। तो तुरंत उसने क्या किया, एक तो दोनों को अरेस्ट किया, नजर कैद में जहां पर थे वहां से अरेस्ट करके प्रॉपर जेल में डाल दिया, उनको कोठड़ी में डाल दिया और पहरा लगा दिया वहां पर हजारों सैनिकों का, अनेक दरवाजे वाला, हाँ, और जो कीर्तिमान था उसको उठाया, छीन लिया उसके हाथ से और पत्थर पे पटककर उसको पीस दिया उसने। एक क्षण में बालक के देहांत हो गया, चला गया गर्जना करते हुए, हा 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 हा, देखता हूं कैसे काल मुझ तक पहुंचता है, और बड़े गर्व से चला जाता है। हर साल देवकी को बालक होता है, लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे आठवें बालक के रूप में भगवान आने वाले थे, तो देवकी को अगर अपने बालकों की हत्या देखी नहीं जा रही थी तो वो जन्म ही देती नहीं उनको, और कंस भी कैसा मूर्ख है, दोनों को अलग रख देता, कीप देम इन डिफरेंट प्रिजन हाउसेस, तो बच्चा होगा ही नहीं, तो आठवां बच्चा कहां से आएगा, मृत्यु कहां से होगी। लेकिन ये सब हमारी सोच है, हमारी जड़ बुद्धि वाली सोच है। देवकी की कॉन्शियसनेस क्या है, देवकी सोच रही है कि भगवान आएंगे, ये मेरी सेवा है, मेरे और मेरे पति की सेवा है कि मेरे गर्भ से आठवें पुत्र के रूप में भगवान आने वाले हैं, तो मैं अगर डर के मारे स्वार्थ के मारे रोक दूंगी इसको तो मेरी सेवा कैसे होगी, इसलिए कोई भी कष्ट सहन करने को तैयार है वो, ऐसा भक्त होता है। क्या चरित्र है देवकी वसुदेव का, हाँ इतना कष्ट सहन किया। आप हम लोग खाली ये पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन कभी कल्पना करके देखिए कि अगर आप वसुदेव होते, आप देवकी होते तो क्या बीतती आप कर, कितनी मेहनत से आजकल बालक होता है, कितना कष्ट होता है बालक को जन्म देने के लिए, बालक प्राप्त करने के लिए, एक माँ बनने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है आजकल। उसके बाद गर्भवती होती है माता, 9 महीने इतना कष्ट सहन कर लेती, क्या क्या अनुभव होते हैं उसको। उसके बाद जन्म होता है तो कितना प्रेम होता है बालक पे, ये एक एक बालक का जन्म होते क्षण से ही बालक आया, रोने की आवाज आई तो उसकी मृत्यु, ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन फिर भी लगातार अपनी सेवा में लगे हुए हैं, ये भक्त है। भक्त यानी उसके जीवन में, उसके सेवामयी जीवन में अनंत संकट आने पर भी वो दी गई सेवा जो है कभी त्यागता नहीं है। वो उस दी गई सेवा से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या कष्ट होगा, क्या प्राप्त होगा, यश मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में सोचता नहीं है वो। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, अगर कुचल भी जाएगा वो खुद, फिर भी वो अपनी सेवा को नहीं छोड़ता, अपने आराध्य प्राणेश्वर को त्याग नहीं करता है, उसकी श्रद्धा जो है वो नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार से 6 बालकों का आंखों के सामने संहार किया गया, उस नन्हे से कोमल सुंदर सुकोमल बालकों को एक लगदा बना दिया गया खून और मांस का, पत्थर पे पटक पटक कर। और वो भी कैसे, वो जो पहले बालक का वध किया गया है उसके खून के दाग अभी भी दीवार पर हैं, ये पहले वाले के, ये दूसरे वाले के, ये तीसरे वाले के। उस घर में आप रह रहे हो, 24 घंटा आपको याद आ रहे, देखो यहां पर मेरे कीर्तिमान का वध किया गया था। कितनी भयंकर अवस्था है सोच लीजिए आप। और एक दो दिन के लिए नहीं, कई साल तक रहे वहां पर, वो उसी माहौल में रहे, श्रृंखला से बद्ध रहे, और उनके आंखों के सामने गर्जना करते हुए, क्रूर हास्य करते हुए कंस आकर उसको पटक रहा है, शिला पर पीस दे रहा है, और फिर मांस लगने का माहौल बन रहा है वहां पर। अपने नन्हे इसको कोख से जन्म दिया, उस मांस के गोले का पूरा छिन्न बिच्छिन्न रूप वहां पर दिखाई पड़ रहा है। फिर उसके बाद में सातवीं बार देवकी गर्भवती होती है, सब नगर में खबर फैल जाती है, और अचानक देवकी को ऐसे अनुभव होता है कि उसके गर्भ से, गर्भाशय से वो गर्भ जो है, वो जीव जो है, वो जा रहा है, कोई ले जा रहा है उसको। उसको बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ, उसमें बड़ा दुखमय अनुभव हुआ, जैसे आम औरत को गर्भपात होते हुए होता है, प्रकृति के कारण कभी कभी गर्भ निकल जाता है, वैसे ही कुछ अनुभव हुआ उसको। सारे मथुरावासी आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसे कैसे हो गया, क्यों देवकी का गर्भपात हुआ, क्या हुआ? तो जब भगवान ऐलान कर रहे थे कि मैं आने वाला हूं, उस समय वो अपनी योग माया को भी बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि जब 6 बालकों का नाश होगा उसके बाद में मेरे अवतार शेष, अनंत शेष देवकी के गर्भ में आएंगे, उस समय तुम उन्हें संकर्षित कर लेना। उनका संकर्षण करके जो बलराम जी की मूल माता है रोहिणी देवी, उनके घर में उनको प्रस्थापित कर देना। तो रोहिणी भी एक पत्नी थी वसुदेव की, जिनके घर में ओरिजिनल बलराम जी थे, जो भगवान के प्रथम लीला अवतार हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं अनंत शेष, उनका संकर्षण करके योग माया ने उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और वे ओरिजिनल बलराम जी में विलीन हो गए, और सबको लगा कि गर्भपात हो गया। कंस के पास खबर पहुंची कि 7वां बालक तो अपने आप ही नष्ट हो गया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये बलराम जी है जिनका जन्म अभी हमने मनाया, श्रावण पूर्णिमा के दिन दोपहर के समय स्वाति नक्षत्र के होते हुए पुण्य पावन बेला पर बलराम जी अवतरित हुए भगवान की लीला को सहायता करने के लिए। और नंद महाराज के घर में रोहिणी थी, अपने दोस्त की बीवी, संकट काल में बचाने के लिए उसको भेजा गया। तो जैसे अपने पति जब पास में नहीं होता ना, तो पत्नी बड़ी एकांत अवस्था में रहती है, श्रृंगार नहीं करती है, अच्छे वस्त्र नहीं पहनती है, अच्छा भोजन नहीं करती है, आम जनता में मिक्स नहीं होती है। और यहाँ पर गर्भवती थी और बालक का जन्म हुआ, तो नंद महाराज का व्यक्तित्व का एक सुंदर पहलू हमको यहाँ नजर आता है। नंद महाराज जानते थे कि ये बड़ी दुखियारी है, पति संकट में है, जेल में है, कंस के जीवन मृत्यु के संघर्ष में है, एक के बाद बालक का मृत्यु हो रहा है, संकट में संभालने के लिए मेरे पास भेजा गया है इनको, और इनका अभी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। तो जैसे अपना बेटा है वैसे ही उन्होंने उनका समारोह मनाया, साधुओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, वेद ऋचाएं गाई गई, भाटों को बुलाया गया, गीत गाए गए, अलग प्रकार के संगीत गाए गए, भोजन बांटा गया, गाय का दान किया गया, अलंकार रत्न बांटे गए, सबको खुश किया गया, सब लोगों ने बलदेव जी का आविर्भाव का आनंद लिया। और रोहिणी को इतना सा भी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पति यहाँ पर नहीं है। दिस इज मैच्योरिटी, दिस इज कॉन्शियसनेस। एक वैष्णव का दिल कैसे होता है, इसका नंद महाराज ने यहाँ पर उदाहरण से बताया। उसे महसूस नहीं होने दिया कि उसके पति जेल में हैं, कौन मेरे बच्चे का जन्म का उत्सव मनाएगा, मेरे पति तो जेल में हैं। इस तरह से एक भाई की तरह, पति की भाई की तरह उन्होंने रोहिणी माता को जरा से भी कमी महसूस नहीं होने दी, और बलराम जी का आविर्भाव बड़े आनंद से मनाया। उसके बाद में परम भगवान गोलोकेश्वर वसुदेव के हृदय में प्रकट हो गए। जैसे ही वो वसुदेव के हृदय में प्रकट हो गए, सारा कारागृह जो था वो प्रकाशमान हो गया, वसुदेव अति सुंदर हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे ही हमारी चेतना में श्री कृष्ण का विचार आता है, श्री कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं, अपनी चेतना में जितना का केंद्र स्थान उनको बना देते हैं, अपना स्वामी बना लेते हैं, यानी कि हृदय में स्वीकार करते हैं भावना के स्तर पर, तो व्यक्ति जो है वह सुंदर हो जाता है। शरीर से भी सुंदर हो जाता है, मन से भी, भावना से भी, चेतना से भी और दिव्यता से भी, हर तरह से वो सुंदर हो जाता है, लोगों के लिए आकर्षक हो जाता है, तेजायमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। जहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति है वो उसके पास में जो भी व्यक्ति आते हैं वो भी उसी प्रकार का अनुभव करते हैं। संत लोग ऐसे होते हैं, उनके हृदय में गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के मन में जब श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसे व्यक्ति के सान्निध्य में सभी तीर्थों का दर्शन करने का अनुभव होता है। तो वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हो गए, फिर वहां से वो देवकी के हृदय में प्रकट हो गए और देवकी बड़ी सुंदर लगने लगी। पहरेदार चले गए कंस के पास, बताया महाराज आपकी बहन देवकी इतनी तेज से भरी हुई नजर आ रही है कि हम देख नहीं पा रहे उसको, इतना दिव्य तेज सौंदर्य, इतना प्रकाश, पूरा कारागृह रात को भी प्रकाश चलता रहता है, पूरे कारागृह में प्रकाश रात के समय फैला रहता है। तो कंस जो है वो आधा डर आधा छदमी, हाँ आधा क्या कहते हैं उसको, गर्व मगरूरी के साथ में हंसता है और कहता है हाँ 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 हा, मेरा काल आ गया है, आने दो उसको, देखता हूँ मेरे हाथों से कैसे बचता है। एक तरह मन में डर है, एक तरह गर्व भी है कि मैं कंस हूँ, बलवान हूँ, मैं तो काल का भी काल हूँ, ऐसा उसको लग रहा है। इस तरह से देवकी ने दर्शन किया कि सारे देवता अवकाश स्थिति में उसके पास में खड़े, मतलब जमीन पर नहीं आए लेकिन उसके आसपास में अवकाश में हैं, इन द स्पेस, ब्रह्मा से लेकर सभी देवताएं अपने अपने वाहन पर बैठकर वहां पर आ रहे हैं और हर रोज उनके गर्भ में जो जीव हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। देवकी को आश्चर्य होता है, पति को बताती है, देखो देखो मुझे दर्शन हो रहे हैं, मैं ब्रह्मा को देख रही हूँ, पता नहीं सत्य है कि असत्य है लेकिन मैं देख रही हूँ, उनको देख रही हूँ, मैं त्रिशूलधारी महेश्वर को देख रही हूँ, मैं इंद्र को देख रही हूँ, मैं गणेश को देख रही हूँ, मैं देवियों को देख रही हूँ, अपने अपने वाहनों बैठे हुए, हाथ में पूजा प्रार्थना के औजार लेकर मेरे गर्भ की ओर आरती उतारते रहते हैं, सुंदर सुंदर श्लोकों के साथ में उनका गौरव करते हैं। वसुदेव भी उसका अनुभव कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि पहले प्रार्थना करते हैं, गुणगान करते हैं, फिर मेरी प्रदक्षिणा करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं देवता लोक में निवास कर रही हूँ, सभी देवता मेरे आसपास निवास कर रहे हैं, क्योंकि सभी देवता जानते थे कि वो गए थे गौलोक धाम में भगवान से प्रार्थना करने के लिए, भगवान ने वादा किया था, वो वादा जो है वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है, इसलिए देवता लोग उसको देखने के लिए, अपना प्रणाम करने के लिए, अपना आदर अर्पण करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अभी कंस ने क्या किया था, जैसे ही ये ऐलान हुआ था कि आठवें गर्भ से उसका वध होगा, उसने अपने दरबार से मीटिंग किया, तो उसके जो सेनापति लोग थे, मंत्री लोग थे, सब राक्षस थे। कंस बड़ा डरने की बात क्या है, अरे आपके खड़ग की चमक से सारे देवता बेहोश हो जाते हैं, देख नहीं पाते आपकी ओर, कई बार परास्त हो चुके हैं आपके, आप चिंता मत करना, आपका शत्रु महाविष्णु है, ये महाविष्णु का बल क्या है, लोगों ने की हुई तपस्या उनके लिए, लोगों ने किया हुआ उपवास, लोगों ने किया हुआ यज्ञ, लोगों ने किए हुई प्रार्थना, दान धर्म यज्ञ यज्ञ, ये सब उसकी शक्ति है, जब ये होता है तो वो शक्तिमान होता है। अरे हम जाकर सब नष्ट कर देंगे, हाँ सब यज्ञ बंद कर देंगे, पूजा पाठ बंद कर देंगे, सब दान धर्म बंद कर देंगे, पवित्र स्थानों को नष्ट कर देंगे, सब मंदिरों की पूजा बंद कर देंगे, हाँ तो ये विष्णु कमजोर हो जाएगा, फिर उसको देख लेंगे क्या करना है। तो उन्होंने सभी साधुओं को ऐसा भयभीत करके रखा था, कोई यज्ञ नहीं, कोई याग नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई श्लोक नहीं, सब लोग डर डर के रहते थे, मन ही मन भगवान को पुकारते थे, कोई उच्चारण भी करते नहीं थे, क्योंकि मुंह खोला तो वध हो जाएगा, ऐसा भयंकर माहौल आतंक का कंस ने पैदा किया था। अरे आजकल हम लोग आतंक आतंक करते हैं, लेकिन वो कुछ कभी कभी एक बार होता है कुछ समय के बाद में, और कुछ समय के लिए उसका आतंक का परिणाम रहता है। लेकिन ये द्विविध गोरिला, हाँ ये अरिष्टासुर, ये तृणावर्त, ये पुतना, ये बकासुर, ये कंस, ये रावण, क्या भयंकर आतंक था उनका। एक व्यक्ति कितने प्रकार के आतंक एक साथ किया करता था। ये कंस का इतना भय था कि लोग मुंह से भगवान का नाम भी हरि का उच्चारण करना डरते थे, उसके लिए बोल नहीं पाते थे। सब जगह सन्नाटा है, कोई बात नहीं करता है ये घटना के बारे में कि देवकी के स्वयंवर के शादी के दिन क्या हुआ। Nobody will talk about it, कोई बात नहीं करना उसके बारे में। हाँ, पान वाले के पास, रास्ते में दुकानदार के पास, धोबी के पास, धोबी घाट पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये विषय फॉरबिडन है, निषेध। तो बहुत भयंकर वातावरण था वैसे। लेकिन जैसे ही देवकी का जो कितने बज गए अभी जैसे ही देवकी का जो गर्भ जो है उसका कालावधि पूर्ण हुआ, तो उस समय वातावरण में बहुत दिव्य बदलाव आ गए, बहुत दिव्य परिवर्तन हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग सतर्क रहिए, बी अलर्ट, अभी कृष्ण का जन्म होने वाला है, जिसको मनाने के लिए अपने दूर दूर से आए हैं। हाँ, तो पृथ्वी जो गाय बनकर गई थी, भगवान से वादा लेकर लौट के आई थी, वो दुल्हन की तरह सज गई, क्योंकि वो भी भगवान की पत्नी है। अपने पति देव को स्वागत करने के लिए दुल्हन की तरह सज गई वो। क्या उसका विचार था? अरे जो चरण कमल को प्राप्त करने के लिए सब संत लोग तपस्या करते हैं, जिन चरणों को ध्यान करते हुए लक्ष्मी देवी, शंकर जी और सारे बड़े बड़े महान देवताओं को अपना पद प्राप्त हो गया है, जो दिव्य चरण कमल प्राप्त करने में बहुत कठिन है, जिनका दर्शन, जिनकी सेवा मिलना बहुत दुर्लभ है, वो चरण कमल अभी मुझे, मेरे ऊपर निरंतर विहार करने वाले हैं, कैसा मेरा भाग्य है। स्वतः सहजता से अभी कुछ लंबे समय के लिए ये दिव्य चरण कमल मेरे ऊपर इच्छा से, प्रेम से, आनंद से चलते रहेंगे। ये पृथ्वी का भाव है। तो क्या क्या हो गया? भगवान ने जन्म का समय जो आया था वो क्या था? वो इस प्रकार था, उस रावण का मास था, कृष्ण पक्ष यानी वद्य पक्ष था, पूर्णिमा के बाद वाला, अमावस्या तक वाला पक्ष था, अष्टमी की तिथि थी जैसे आज है, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लग्न, अर्धरात्रि का समय, चंद्रोदय की बेला, और दिन कौन सा है? अष्टमी का। चंदा कैसा होता है? आधा होता है। लेकिन जो जिस वंश में कृष्ण अवतरित होने वाले हैं अभी, वो चंद्र वंश है। हाँ, राधा रानी का सूर्य वंश है, तो सूर्य के जो अवतार विश्वभानु महाराज है, भानु जी, उसमें उनका जन्म हुआ है। तो चंद्र देव तो जानते हैं कि मेरे वंश में जन्म हो रहा है, मेरे वंश में परम भगवान मेरे वंश को पवित्र करने के लिए अवतार लेने वाले हैं, तो मैं क्यों आधा रहूं, मैं भी पूर्ण बन जाऊंगा। इसलिए भगवान के स्वागत करने के लिए अर्ध चंद्रमा, अष्टमी का चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा बन गया। सहस्त्र दल शत दल के कमल खिल गए सरोवरों में। रात में कभी कमल खिलता है क्या? सब कमल जो है वो मुरझा जाते हैं, मिट जाते हैं, उसके अंदर सारे फूल बंद हो जाते हैं, कोई फल फूल रात को नहीं आता है, एकाध दो फल रात फूल रात को आते हैं, निशिगंधा टाइप, लेकिन सारे फल दिन में आते हैं। वो सारे फल रात में खिले, यमुना में, सरोवर में, कुंडों में, पवित्र जलाशय में, सब जगह पर कमल सहस्त्र दल के, शत दल के खिल गए। उनके अंदर जो रात को विश्राम करते हैं सारे पंछी भ्रमर, वो जग गए सब लोग, वो भ्रमर उन फूलों के अंदर जाके गुंजन करने लगे। कोयल, मोर और तरह तरह के गाने वाले पक्षी जो है वो जग गए और अपने अपने मधुर आवाज में किलरव करने लगे, किल्लौड़ करने लगे। जो साधु लोग भयभीत थे, जिनको डर लग रहा था भगवान का नाम उच्चारण, उनके अंदर एक अचानक स्फूर्ति आ गई, जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे और सारे भय से मुक्त होकर तुरंत उन्होंने यज्ञ आज शुरू किया रात के बीच में। रात में मुहूर्त नहीं होता यज्ञ का कोई, सूर्यास्त के बाद। रात में ऐसे भय से मुक्त होकर अपने यज्ञशाला में जाकर यज्ञ शुरू किया उन्होंने। पक्षी मधुर ध्वनि करने लगे, वृक्ष फूलों से लद गए, वेलियां फूलों से लद गई, हलक प्रकार के सुगंधित फूल सब जगह प्रकट हो गए, आकाश तारों से भर गया और सारे तारे जो उद्दीपित हो गए, मतलब अपने जितना तेज था उनका उससे अधिक तेज से चमकने लगे। फिर उसके बाद बादल छा गए और गर्जना करने लगे, लेकिन वो बादल की गर्जना डरावनी नहीं थी, वो गर्जना थी बादल की लेकिन हृदय को आनंद देने वाली थी, प्रसन्न करने वाली थी। और घनघोर वर्षा शुरू हुई, दश दिशाएं निर्मल हो गई, सब भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी समुद्र कुंड के जल अपने आप स्वच्छ हो गए, सब जगह से वायुदेव सुगंधित मंद और शीतल फूलों के पुकेसर लेते हुए वो हवा लेकर सब जगह बहने लगे। सब आसमान तो सुगंधित हो गया शीतल मंद और ठंडे, शीतल मंद और सुगंधित वायु से। दुखी भयभूत साधु भयमुक्त हो गए, आनंद से रात को यज्ञ करने लगे, पर्वत वृक्ष गाय ब्राह्मण देवता सब लोग संपत्ति से समृद्ध हो गए। एक प्रकार समृद्ध थे वो, लेकिन कंस के भय की वजह से बहुत गरीब हो चुके थे, क्योंकि गरीब आदमी कब होता है, जब उसका मन उदास होता है। ये उदासी की वजह से ये सब कुछ होते हुए भी एकदम उदास और गरीब लग रहे थे। वो सब सदन हो गए, उनकी संपत्ति का विकास हो गया और आकाश से देवता लोग पारिजात मंदार मालती फूलों की वर्षा करने लगे। अलग अलग प्रकार के जो देवता थे, जैसे विद्याधर स्त्रियां अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी, किन्नर गंधर्व गाने लगे अलग अलग दिव्य रागों में, सिद्ध और चारण उन्होंने सुंदर सुंदर मधुर मधुर प्रार्थनाएं अर्पण करना आरंभ किया। संतों ने और ऋषि मुनियों ने देवताओं के साथ में हवाई जहाज में भर भर कर फूल डालना आरंभ किया। ऐसे बताया गया है कि वो एक हवाई जहाज भर के विमान से आ रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर भर के आ रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि मथुरा पर पुष्पों की बरसात हो रही है कंटिन्यूअस सुगंधित फूलों की। साधुओं के मन प्रेम से और आनंद से भर गए, चर अचर सृष्टि जो है वो आनंद से भर गई और सागर और बादल मिलकर सुंदर ध्वनि करने लगे और सबके ऊपर जलाशय जल वर्षाव करने लगे। इस प्रकार से कंस की मथुरा जो है वो देवताओं के हवाई जहाज से उसका आसमान भर गया, सब फूलों से, मृदंग दुंदुभी बेरी ऐसे वाद्यों से सब जगह आवाज गूंजने लगी और सब जगह जय जयकार सुनाई पड़ने लगा। जय 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 बोलिए, जय जय जय, ये सब जगह जय जयकार होने लगा। तो इससे सुंदर बेला में देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कैसे भगवान का दर्शन था, हमारे जैसे योनि मार्ग से प्रकट नहीं हुए, वो सीधे गर्भ से बाहर प्रकट हुए। पूर्ण 16 वर्ष की युवावस्था में पूर्णता विकसित शरीर, उनके सुंदर सुंदर बाल जो कंधों तक फैल रहे थे, शंख चक्र कदा पद्म धारण किए हुए, कमल नयनों वाले जिनके मुख पर ऐसी पत्रावली की रचना की गई है कि हजारों करोड़ों कामदेव वहां से मोहित होकर बेहोश हो रहे हैं। ना सुंदर चेहरा था उनका। आप जानते हैं पत्रावली का मतलब क्या होता है? वो आपने गोविंद जी का चित्रपट देखा होगा ना, गोविंद जी उनके चेहरे पर जो फूल का चित्र निकालते हैं ना अलग रंगों का, उसको पत्रावली कहते हैं। वो कला में ललिता देवी बहुत एक्सपर्ट हैं, सब गोपियां एक्सपर्ट हैं, ललिता देवी खास एक्सपर्ट है उसके अंदर पत्रावली की रचना करने में। वैसे सुंदर पत्रावली ऑलरेडी ये न्यू बॉर्न बेबी मतलब भगवान कृष्ण के ऊपर है, सब कामदेव को मोहित कर रही है। छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है और कौस्तुभ मणि उनके नेकलेस में विराजमान है। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, हजारों सूर्यों का प्रकाश उस पीताम्बर से निकल रहा है और सारे आसमान को प्रकाशित कर रहा है। पीताम्बर के ऊपर एक करधनी है, यानी कि एक वेस्ट बेल्ट है, एक गहना है। वो गहने का प्रकाश जो है वो चारों दिशाओं को चकाचौंध कर रहा है। लग रहा है कि काले बादल में कोई बिजली चमक रही हो, क्योंकि भगवान का रंग सांवला था। उनके मुकुट में वैदूर्य मणि था, अनंत रत्नों से मुकुट सुशोभित हो रहा था। आप सब लोग चिंतन कीजिए, इसे मैं वर्णन करते जा रहा हूं। ये चिंतन जो है आत्मा के लिए बड़ा शुद्धिकारक है, बड़ा पवित्र है। भगवान ने अपने शरीर पर अनेक प्रकार के अलंकार पहने हुए थे, अद्भुत और कांतिमान कंकण पहने हुए थे, सूर्य के समान प्रकाशित कुंडल पहने हुए थे। उनके भुजाओं में, उनके कलाई में, उनके उंगलियों में अलग अलग अंगूठी, अलग अलग अलंकार शोभा दे रहे थे। और जो माला पहने हुए थे, वो सुंदर सुंदर माला फूलों की, उसके अंदर भ्रमर जो है, मधु लोलोप यानी कि मधु की अपेक्षा से आए हुए भ्रमर जो है मधुकर, वो गुंजन कर रहे थे। अनेक उनकी कमर से लेकर घुटने तक माला फैली हुई है फूलों की, कि गले को सुशोभित कर रही है, उसमें मधुकर जो है वो गूंज रहे हैं। तो ये सुंदर दर्शन भगवान ने जब दिया, तब एक क्षण के अंदर ही वसुदेव सब भय से मुक्त हो गए। जितनी देर से कंस के भय में जी रहे थे, भगवान का दर्शन करते ही वो भय से मुक्त हो गए। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है, कोई व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है और भगवान को अपने जीवन में स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भय मुक्त हो जाता है। वसुदेव उसका अनुभव कर रहे हैं, उनके जीवन में साक्षात भगवान पुत्र बनकर आ रहे हैं। वसुदेव ने उस समय तुरंत संकल्प कर दिया और मन में संकल्प कर ब्राह्मणों को मन में बुलाकर उन्होंने 100,000 गाय अलंकार सहित दान कर दी। तो जेल में उनके पास कोई अभी सब कुछ है, लेकिन जेल में बंद आदमी के पास में उधर रिसोर्स नहीं, उसके पास में सब कुछ अपने राज दरबार में, लेकिन वो तो जेल में कैद है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा करने वाले को कोई सेवा करने से रोक नहीं सकता। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि देर इज नो मटीरियल इम्पेडिमेंट इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड। कोई भी भौतिक वस्तु हमारे जीवन में अवरोध नहीं कर सकती है। कोई भी संकट आपको आनंदी होने से रोक नहीं सकता है। अगर आपको दिव्य आनंद प्राप्त करना है और आप प्राप्त कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो कोई भी संकट और दुखमय स्थिति आपके दिव्य आनंद में स्थिति को रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये भौतिक स्तर है और ये दिव्य स्तर है। दिस आर मटेरियल थिंग्स एंड दिस आर ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, टोटल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। केवल हमें कृष्ण को स्वीकार करके उन पर श्रद्धा रखते हुए, उनको केंद्र स्थान में रखते हुए जीवन में कार्य करना है। बड़े से बड़े दुखमयी स्थिति में होने पर भी आप दिव्य आनंद का अनुभव उसी स्थिति में कर सकते हो। दिस इज ओनली पॉसिबल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। केवल कृष्ण भावना में ये मुमकिन है, और किसी योग में, किसी कर्म कांड में, किसी ज्ञान कांड में, सिद्धि कांड में ये अनुभव आप नहीं कर सकते हैं कि आपके जीवन में दुख है फिर भी आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये कोई चीटिंग नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है। ये कोई दिखावा नहीं है, कोई नाटक नहीं है, ये हृदय की स्थिति है। बाहरी रूप से दुख का और कष्ट का अनुभव हो रहा है, फिर भी आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। ये वसुदेव ने अनुभव किया। फिर उसके बाद में भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान ने बोलने के शुरू के पहले, शुरू करने के पहले वसुदेव ने भगवान का बड़ा स्तुति किया, बड़ा गौरव किया, बड़ी प्रार्थनाएं अर्पण की। फिर देवकी ने बोलना शुरू किया, लेकिन देवकी अभी भी भयभीत थी। तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान को देखते ही वसुदेव तत्क्षण भय मुक्त हो गए, लेकिन वसुदेव की पत्नी देवकी जो है अभी भी भयभीत है। कारण यह है, वो समझाते हैं कि देवकी का वात्सल्य वसुदेव के वात्सल्य से श्रेष्ठ था। उस वात्सल्य के प्रभाव से भगवान षड ऐश्वर्य के साथ में प्रकट हुए हैं, फिर भी उसको लग रहा है डर कि कंस आएगा और उनको मारेगा। इसलिए वो डर के डरते 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 प्रार्थनाएं कर रही है, और अंत में प्रार्थना करती भी है कि आपका ये रूप मिटा दो, आप एक बालक के रूप में मेरे सामने आ जाओ, मैं कहीं आपको छुपा लूंगी ताकि कंस के सामने नजर नहीं आएगा। तो एक भाव भयमुक्त का वसुदेव जी अनुभव कर रहे हैं और एक भय का अनुभव देवकी कर रही है। आध्यात्मिक जीवन जो है ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल ऑफ वैरायटी। कहीं दास्य है, कहीं वात्सल्य है, कहीं साख्य है, कहीं माधुर्य है। माधुर्य में ऐश्वर्य माधुर्य है, प्रेम माधुर्य है, स्थान का अंतर है, व्यक्तियों का अंतर है। अलग प्रकार के अनुभव एक ही प्रसंग से व्यक्ति अनुभव करता है। एक ही प्रसंग है, भगवान अवतरित हुए हैं, लेकिन वसुदेव को अलग अनुभव हो रहा है, देवकी को दूसरा अनुभव प्राप्त है। और भगवान भी कैसे हैं, जिसका जैसा भाव है वैसा उसको अनुभव दे रहे हैं। तो फिर भगवान इनके बाद में बोलना आरंभ करते हैं, और भगवान उनको कहानी बताते हैं कि मनु के काल में आप और आपकी पत्नी देवकी सुतपा और प्रश्नी थे। आप प्रजापति थे, और प्रजापति होने पर भी आपने दो मन्वंतर काल तक तपस्या किया। एक मन्वंतर कितने का होता है? 71 दिव्य युग। हाँ, सत्य त्रेता द्वापर कली के चार मिलकर एक दिव्य बनता है। ऐसे 71 जब होते हैं तो एक मन्वंतर होता है। ऐसे दो मन्वंतर मन्वंतर तक काल तक सुतपा और पृष्णी ने तपस्या किया, सूखे पत्ते खाकर पेड़ से गिरे हुए, बहुत कठोर तपस्या किया। तब मैं प्रसन्न हुआ, भगवान कह रहे हैं मैंने आपको दर्शन दिया, पूछा क्या चाहते हो? तो सुतपा और पृष्णी ने मुक्ति नहीं मांगी, वैकुंठवास नहीं मांगा, लेकिन मांगा कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। मतलब क्या मांगा? भगवान की सेवा मांगी। हमें भी कभी भगवान का दर्शन हो जाए तो वैकुंठवास नहीं मांगना, गौलोकवास नहीं मांगना, जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मांगना, सेवा मांगना, सेवा। क्योंकि सेवा को प्राप्त करने में हमारी मुक्ति, हमारा वैकुंठवास, सब कुछ सम्मिलित है। जहां पर भी हम भगवान की सेवा में संलग्न है वही वैकुंठ है, वही गोलोक है, वही भगवान का निवास है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। इसलिए भक्त जो है कभी भी भगवान से मुक्ति तक नहीं मांगता, वैकुंठ का वास तक नहीं मांगता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, ऐसे नहीं कि जन्म के अंत में मुक्त कर दो। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकित्वाय। तो आपने मुझसे ये मांगा कि आप जैसा पुत्र हमें होना चाहिए, मैंने तथास्तु कह के मैं चला गया। फिर मैंने सोचा कि मुझ जैसा तो और कोई नहीं है मेरे अलावा, तो मैं ही आता हूँ। तो आपके पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया पृष्णी गर्भ नाम से। उसके बाद में अगले जन्म में आप कश्यप और अदिति बने, तब मैं उपेंद्र के रूप में वामन अवतार लिया, छोटे कद वाला, और बलि का मैंने मान हरण किया। और ये तीसरी बार है आप वसुदेव देवकी के रूप में हो, आप वही सुतपा और पृष्णी हो, आप ही कश्यप और अदिति हो, और अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। ये सब क्यों बताया? क्योंकि अगर वो षड ऐश्वर्य पूर्ण चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट नहीं होते तो शायद देवकी वसुदेव को यकीन नहीं होता कि ये कंस को मारने में सक्षम होंगे अपने वात्सल्य के प्रभाव के कारण। उनको मुमकिन था कि पहले वो छोटे से बालक के रूप में, नवजात अर्भक के रूप में प्रकट हो जाएं, लेकिन वो चतुर्भुज के रूप में ऐश्वर्य के साथ प्रकट हुए। ये विश्वास दिलाने के लिए, डोंट वरी आई हैव कम नाउ टू सॉल्व ऑल योर मिजरीज, मैं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूँ, और वो समाधान करने में सक्षम भी हूँ। तो ऐसा वर्णन करते हैं, तो यहां पर ये सब कहने के पश्चात भगवान उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुरंत मुझे गोकुल ले चलो, और नंद महाराज के पास उनको अभी कन्या हुई है, उससे यहां ले आओ, मुझे वहां पर गोद में छोड़ के आओ। और ऐसे कहते ही जैसे कोई नाटक का होता है ना, क्या अभिनय करने वाला अभिनेता अपना भेष बदल के तुरंत दूसरे रूप में आता है, वैसे ये जो सुंदर रूप था षड ऐश्वर्य पूर्ण वो अचानक गायब हो गया, और एक नन्हे से रोते हुए बालक के रूप में वहां पर उनकी गोद में भगवान प्रकट हुए। तुरंत देवकी ने उनको उठाया, अपने गोद में लिया, और भगवान के आदेश के अनुसार उसको टोकरी में डाल लिया। जैसे ही उनको टोकरी में डाला गया तो अनेक चमत्कार हुए। सारी श्रृंखलाएं जिनसे देवकी वसुदेव को बांध के रखा था वो टूट गई, जितने ताले लगाए थे वो टूट गए, जितने दरवाजे बंद थे वो खुल गए, जितने पहरेदार थे सब योग निद्रा में सो गए। कौन सी भी निद्रा? वो महानिद्रा, योग निद्रा। जो रात रात पर आंखों में तेल डालकर जगते थे देखने के लिए कोई बच्चा तो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, खड़ांत खड़ा बोलते हैं मराठी में उसको, हर क्षण की न्यूज अपडेट कंस को देते थे वो। जैसे ही कृष्ण का बालक रूप में अवतरण हुआ उसके पहले ये सब लोग सो गए, सब दरवाजे खुल गए आवाज करते हुए, ताले टूट गए, श्रृंखलाएं गिर गई, ये लोग सोते रहे। फिर जैसे ही वो बाहर निकले तो आकाश में घनघोर बादल छा गए, बादल गर्जना करने लगे, घनघोर वर्षा होने लगी, तूफान के साथ में बिजलियां चमकने लगी, बहुत भयावह वातावरण था एक दूसरे से, लेकिन बड़ा प्रसन्न भयावह वातावरण था। डर लग रहा था आवाज को देखकर, लेकिन मन में बहुत आनंद उमड़ रहा था, ऐसा ये वातावरण था। बीच रात में पूर्ण चंद्रमा, आकाश से भयंकर वर्षा हो रही है बिजलियों के साथ में, वसुदेव को प्रश्न हुआ, अभी कैसे जाऊंगा मैं, क्योंकि क्या देख रहे हैं, जमुना जी लहर रही है, उछल रही है। जमुना जी के बारे में वर्णन दिया है यहां पर कि जमुना जी का क्या स्थिति हुआ था। एक मिनट मैं आपको बताता हूं। जमुना जी भयानक यानी कि फियर्स बन गई, आवर्त शत बन गई यानी कि अनेक गोल गोल घूमने वाले भंवरे बन गए उसके अंदर, बड़ा भयंकर प्रभाव उसके निकलने लगा। जब उर्मी फेनिला उसके अंदर इतना वो फेंड पैदा हो गया उसके तीव्र प्रवाह से और वेग से, और वो आकुल यानी कि बहुत ही एजिटेटेड हो गई, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसा भयंकर स्थिति हो गई उसके अंदर। जैसे ही ये बाहर निकले डर तो लग रहा था, कैसे जाऊंगा अंदर, जाना तो है, निश्चय तो किया हुआ है, जाना है। तो अचानक शेषनाग जो अपने फन फैलाकर उनके पीछे आ गए। आचार्य बताते हैं कि जैसे ही हम श्री कृष्ण को और उनकी सेवा को अपने जीवन में अपनाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए और हमारी सेवा को सहायता करने के लिए, बलदेव जी हमें सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही कृष्ण को लेकर जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बलदेव जी उनकी रक्षा के लिए वहां पैदा हो गए, प्रकट हो गए शेषनाग के रूप में। और वो पानी के पास आने लगे तो पानी और ऊपर ऊपर आने लगा, पहले तो एड़ियों तक था, फिर घुटने तक आया, फिर कमर तक आया, फिर ऊपर ऊपर गले तक चला गया। वसुदेव पुकारने लगे, कोई लो कोई लो कोई लो, क्या हो गया बीच में? भगवान ने अपने पांव जो है वो टोकरी से बाहर निकाले, यमुना जी और ऊपर गई, वसुदेव के नाक और सर के ऊपर पानी चला गया। एक जगह लिखा है कल्प भेद के रूप में कि भगवान जो है वो यमुना जी में गिर गए और वो पुकार रहे, कोई लो कोई लो, लाला गिर गया, कोई लो कहाँ गिर गया कहाँ गिर गया। उधर एक घाट है अभी मथुरा में, कोई लो घाट जहां पर वसुदेव जी ने प्रवेश किया था, वहां से पुकारा था, कोई लो तो ये कारण क्या था? अरे जमुना जी जब से आदेश मिला है तब से सूर्यदेव के गर्भ से जन्म लेकर वेट कर रही है वृंदावन में, कब आएंगे ठाकुर जी मेरे स्वामी मेरे मालिक, कब आएंगे, तब मैं उनका दर्शन करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। तो भाई आ गए हैं, सब वातावरण देख के सिग्नल मिल गया था कि आए हैं, आ गए आ गए आ गए हैं। वातावरण में होता हुआ बदल जो है वो बता रहा है कि आ गए हैं और अब बाहर भी आ गए हैं, टोकरी में है, मेरे पास आ रहे हैं। तो वो ऊपर ऊपर चली गई उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए और भगवान ने भी उसकी भावना को तुरंत प्रतिसाद दिया, अपने आप को छलांग लगाकर कूद गए पानी में। तो जमुना जी भगवान के आते ही भगवान का चरणामृत बन गई। ये जमुना जी का महात्म्य है। जमुना जी इज चरणामृत ऑफ श्री कृष्णा, जिन्होंने स्वयं पहली बार जन्म लेने के बाद तुरंत ही कुछ ही क्षणों में बाहर निकले वो और अपने आप को जमुना जी में छलांग लगा दिया उन्होंने। और जैसे ही भगवान पानी में गिर गए जमुना जी ने तुरंत रास्ता दिया, तुरंत वसुदेव ने भगवान को ग्रहण किया और टोकरी में रखा। कुछ लोग कहते टोकरी में रखा, कुछ लोग कहते हाथ में पकड़ा, एक ही बात है। और इतनी उछलती हुई जमुना के अंदर खिले हुए फूल हैं, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, सुगंधित हवा बह रही है, पक्षी कुंजरव गान कर रहे हैं, किलकिलाहट कर रहे हैं, मोर नाच नृत्य कर रहे हैं, भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, ऐसे सुंदर वातावरण में वसुदेव जो है जमुना जी के बीच में भगवान को लेकर तुरंत चले गए, उस पार हो गए और गोकुल में प्रवेश किया उन्होंने। जब गोकुल में प्रवेश किया तो उस समय यशोदा को भी प्रसूति हुई थी, शी हैड डिलीवर्ड अ बेबी बेबी गर्ल। कुछ आचार्य कहते हैं कि यशोदा ने दो बालकों को जन्म दिया था, एक है यशोदा कृष्ण गौलोकवासी प्रेम माधुरी वाले यशोदा कृष्ण, जिसके जिनकी यशोदा माई चिरंतन माता हैं, वो उनके घर में विराजमान थे, उनका भी जन्म हुआ और एक कन्या का जन्म हुआ। जब भगवान ने आदेश दिया था तो भगवान ने उसको वरदान दिया था कि जब तुम ये सेवा करोगी पहले शंकरशरण को लाने की यहाँ पर रोहिणी के गर्भ में और बाद में मेरे लिए वातावरण निर्माण करने की, तो तुम मेरी बहन के रूप में आओगी, मेरी बहन के रूप में तुम्हारा गौरव किया जाएगा, तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो वो भगवान के साथ में उसका जन्म हुआ, तो एक बालक और एक कन्या, एक पुत्र और एक कन्या। जब वसुदेव वहाँ पहुँचे तो वैसे कहते हैं कि यशोदा देवी डिलीवर हो गई लेकिन वो इतनी थक गई, उनको लगा कि कुछ जन्म हुआ है बालक का, लेकिन वो समझ में नहीं आया और वो सो गई। और सारा गोकुल, सारे गोकुलवासी निद्रा में रममाण थे योग माया के प्रभाव से, सब लोग निद्रिस्त हैं। तब वसुदेव पहुंचते हैं और सीधे अंतपुर में वो सारिका जो सुतका सुधि का गृह है वहाँ पहुँचते हैं जहाँ यशोदा लेट रही हैं। अभी आमतौर पर कोई आदमी ऐसी जगह प्रवेश नहीं करता है, नोबडी नो जेंटलमैन विल गो टू अ डिलीवरी रूम। हाँ, हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग जाते नहीं हैं, सिस्टर को पूछते हैं इज इट ओके एवरीथिंग देन वी गो इनसाइड। लेकिन भगवान का आदेश उनके सिर पर था, उनको बताया कि सेवा उनके लिए महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मर्यादा व्यतिक्रम करते नजर आते वो, लेकिन फिर भी जैसे हमारे गोविंद थे वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में थे, तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए उनको लांग कर अंदर चले गए, लेकिन सेवा होने के बाद अपना भोजन करने के लिए अंदर ही बैठे रहे, बाहर नहीं आए। तो सेवा करने के लिए नियम हम तोड़ सकते हैं कभी, लेकिन खुद के लिए वो नियम जो एटिकेट है मर्यादा हम तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर नियम नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी भगवान का आदेश है इसलिए बालक को लेकर जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जैसे संकर्षण बलराम में विलीन हो गए, वैसे ये बालक जो देवकी कृष्ण थे, ऐश्वर्य कृष्ण थे, वो जब उनके हाथों से रखे गए तो वो यशोदा कृष्ण के अंदर विलीन हो गए। और वो जो कन्या थी योग माया, उसको उठाकर वापस लौटे तो दोबारा जमुना जी ने रास्ता दिया और बड़ी तेजी से निकलकर कारागृह में गए। जैसे प्रवेश किया कारागृह में तो एक एक दरवाजा बंद होते गया जिसमें प्रवेश करते गए, ताला लगता गया। जब अंतरिम कक्ष में गए तो आखिरी ताला भी लग गया, सारी श्रृंखलाएं चढ़ गई। और उस उतने समय के बाद में पहुंचने के बाद में बालिका ने पहली बार रोना आरंभ किया, ना वो यशोदा के बाजू में तभी रोई, ना जमुना जी के पास जा रहे तभी रोई, ना कारागृह प्रवेश करते हुए रोई। रोई तब जब ही स्थिति पूर्ववत हो गई, यानी कि सारे दरवाजे बंद, सारे लॉक बंद, सारी श्रृंखलाएं वापस बंद गई हैं, और तब जाकर स्ट्रैटेजिकली योग माया ने रोना शुरू किया। और तब जाकर इतने देर से दरवाजा बंद हो रहा है, खुल रहा है, श्रृंखलाएं लग रही है, ताला लगता जा रहा है, उनकी नींद नहीं खुली है, जब वो बालक की आवाज़ सुनाई पड़ती है सारे पहरेदार उठ जाते हैं और तुरंत भागते हैं, महाराज महाराज रोने की आवाज़ आ रही है। बीच रात में, अंधकार में, रात में कंस जो है वो भय का अनुभव कर रहा है, कई दिन से कई रात से उसको नींद नहीं आ रही है। पानी पीने को ग्लास लेता है तो ग्लास में उसको महाविष्णु का दर्शन होता है, हवा आती है देखता कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, मुझ पर आक्रमण करने वाला है। आईना देख रहा है तो क्या देख रहा है, अपना सर जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, धड़ दिखाई पड़ रहा है, अशुभ चिन्ह आकाश में अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वो है ना घुबड़ औल, वो सब जगह चिल्लाते हुए दिखाई पड़ रहा है, गीदड़ मंडराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसको तो जीना ही हराम हो गया, नींद हराम हो गई, खाना पीना हराम हो गया, उसको खाने की थाली में, पीने के प्याले में सब जगह शत्रु दिखाई पड़ रहा है। He was highly Krishna conscious. लेकिन उसकी जो कृष्णमती है वो प्रतिकूल थी। आचार्य बताते हैं कि हमें कंस जैसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं करना चाहिए। We should not be Krishna conscious like Kansa was. He was प्रतिकूल, He was unfavorable. एक शत्रु की तरह भगवान का चिंतन कर रहा था, वो डर के मारे कर रहा था, प्रेम से नहीं कर रहा था, एक सेवक के रूप में नहीं कर रहा था, एक शत्रु के रूप में कर रहा था। लेकिन एक बात जरूर हुई, उसके चिंतन करने से वो सब पापों से मुक्त हो गया और भगवान से हाथ से वध होते ही वो गौलोक धाम चला गया। तो इसलिए रूप गोस्वामी समझाते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी प्रकार से, छोटे प्रकार से, बड़े प्रकार से, अच्छे प्रकार से, बुरे प्रकार से, कैसे भी हो, अगर अच्छे प्रकार से मुमकिन नहीं है तो बुरे प्रकार से क्यों ना हो, कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का विचार जरूर करना चाहिए। वो इतना दिव्य है, इतना ट्रांसेंडेंटल, इतना एब्सोल्यूट है कि किसी प्रकार से करने पर भी उसका परिणाम दिव्य ही होता है। इस तरह से अगर इतना परिणाम कंस को हुआ तो अगर भक्त लोग प्रेम से भगवान की स्मरण करते हैं तो उनके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कुछ समय पर हमारे कथा में विश्राम करते हैं, विश्राम देते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हम सबके लिए, हमारे जीवन को समृद्ध करने के लिए, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए, हम सबको पतित अवस्था से दिव्य अवस्था में लाने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, हमें उत्सव मनाने के लिए, अवसर देने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ है। ये जो उत्सव है, ये हमें उत्सव, उसका अर्थ यही है, अंधकारमय दुखमय अवस्था से ऊपर उठाने का कार्यक्रम। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मूल भारत में देर वॉज नो डिप्रेशन, मानसिक तनाव स्ट्रेस ये भारत में नहीं था, अभी आने लगा है, क्योंकि भारतवर्ष पूर्ण निवास छोड़कर हम भारतवर्ष को पाश्चिमात्य देश बनाकर वहाँ निवास कर रहे हैं, मन से यहीं रहकर उस तरह से निवास कर रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह बढ़ रहा है हमारा। तो भारतवर्ष में ये डिप्रेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि भारतवर्ष में हर आए हफ्ते में एक उत्सव होता है। एवरी फ्यू डेज देयर इज अ फेस्टिवल। ये खत्म होते ही दूसरे की तैयारी करनी है। मंदिरों में क्या होता है, अरे अभी झूलन यात्रा समाप्त होगी, अभी गोकुलाष्टमी का तैयारी शुरू हो गई, अरे अभी गोकुलाष्टमी हो गई तो राधाष्टमी का उत्सव शुरू हो जाएगा, अरे अभी बीच में वृंदावन धाम का प्रकटीकरण होने वाला है 24 तारीख को, अरे उसके बीच में अभी ये होने वाला है, अरे उसके बीच में अभी यहाँ पर झूलन यात्रा होगी। लगातार चैतन्य महाप्रभु जब निकले, कई कोशिश किया उन्होंने निकलने का, पुरी से ही निकलने का वृंदावन जाने के लिए, लेकिन भक्त लोग कैसे बोल रहे हैं, रुको रुको अभी ढोल यात्रा है, रुको रुको अभी जन्माष्टमी है, रुको रुको अभी रथ यात्रा है, अरे अभी ये है, अभी ओडन षष्ठी है, उसके बाद संक्रांति है, उसके बाद में होली है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में वो है। दो चक्र बीत गए फिर भी उनका डिस्क्रिप्शन बीत नहीं गया। उनका चक्र जो है चालू है सर्कुलर फैशन में। ये हमारे भारतवर्ष का गौरव है। इतने सारे अलग अलग प्रकार के उत्सव हैं कि मनुष्य को दुख होते हुए भी दुख का अनुभव करने के लिए समय नहीं मिलता है, उसका मन आनंदमयी क्रियाओं में, सेवाओं में लगा रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है। ये भी एक फॉर्मूला है दुख से मुक्त होने का, बी एंगेज कॉन्स्टेंटली इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, इन सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स टू प्लीज द लॉर्ड, एंगेज योर सेंसेस एंड माइंड इन सर्विंग द लॉर्ड, तो आप हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएंगे, हर प्रकार के कलह से मुक्त हो जाएंगे, झगड़े से मुक्त हो जाएंगे, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जन्माष्टमी, आप सबको बड़ी बड़ी बधाई हो उसके लिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो परम दयालु, परम करुणामय, करुणा घन, करुणा धाम श्री कृष्ण भगवान अवतरित होने वाले हैं दोपहर को और रात को, बीच रात में पूर्ण चंद्रमा के सान्निध्य में, वो आपके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाएं, आपका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाएं, आपकी मति उनकी याद से भर जाएं, आपके इंद्रिय उनकी सेवा से भर जाएं और आपका जीवन पूर्ण कृष्ण भावना से संपृक्त हो जाए। यही हम राधा वृंदावन बिहारी लाल से आपके सबके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम।